and also I would like to request, please keep your mobile in silent mode, everyone, during the program. And also, please do not talk among each other while we are discussing this. If somebody would want to talk between each other, then सिर्फ चार वेद नहीं है, ये वैदिक ज्ञान है। इसका यहाँ पे देखिए क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, इसका पूरा वर्ण विवरण ध्यान से देखिएगा। वैदिक ज्ञान को दो भाग में बांटा जाता है, सारे ये वैदिक ज्ञान कहते कहे जाते हैं, जितने शास्त्र हैं। एक को कहते हैं श्रुति और दूसरे को बोलते हैं स्मृति। श्रुति जो वैदिक ज्ञान है उसमें श्रुति का अर्थ है कि ये रिवील्ड एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो प्रकट होता है अपने आप, स्वतः प्रकट होता है, भगवान के द्वारा दिया जाता है। और ये गुरु परंपरा के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमारे तरफ ठीक है। दूसरा स्मृति जो कंपोज्ड बाय सेजेस, मतलब जो कि ऋषि मुनि जो है जिसको लिखते हैं अपने अनुभव, अपने रियलाइजेशन, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो शास्त्रों की रचना ऋषि मुनि करते हैं, या इतिहास या हिस्ट्री लिखते हैं, उसको बोलते हैं स्मृति। तो ये श्रुति जो है इसको तीन भाग में बांटा गया है, वेद जिसमें चार वेद हैं, ऋग यजुर् साम और अथर्व, ये चार वेद श्रुति के अंतर्गत है। इसके अलावा उपवेद है, उपवेद में धनुर्वेद, आयुर्वेद, इसके अलावा और भी कई वेद वेद की शाखाएं हैं, उपवेद जिसको बोलते हैं, और वेदांग। वेदों के अंतर्गत जो है ऋग यजुर् साम और अथर्व, इसके अंतर्गत में चार कैटेगरी आती है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। और वेदांग के अंतर्गत जो है वो पांच चीज, छह चीजें आती हैं, कल्प जिसको रिचुअल डिटेल्स बोलते हैं, शिक्षा प्रोनंसिएशन, व्याकरण जिसको ग्रामर, निरुक्त एटिमोलॉजी, छंद, मीटर्स एंड ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी टाइम कैलकुलेशन। तो ये हो गया श्रुति, ठीक है। इसके अलावा स्मृति के अंतर्गत में छह चीजें आती हैं, रिचुअल सूत्र कनेक्टेड टू कल्प वेदांग, तंत्र स्पोकन बाय लॉर्ड शिवा टू पार्वती, पंचरात्र जो कि वैष्णव वर्षित है, पुराण 18 मेजर पुराण और 18 माइनर पुराण, इतिहास जिसमें कि महाभारत आता है, रामायण आता है, और सिक्स दर्शन। रिचुअल सूत्र में श्रौत सूत्र एक्सप्लेन पब्लिक यज्ञ, गृह सूत्र एक्सप्लेन होम यज्ञ एंड धर्म सूत्र इस लॉ बुक, इसमें मनुस्मृति आती है। इसके अलावा तंत्र में तीन प्रकार के तंत्र हैं, तामसिक तंत्र, राजसिक तंत्र और सात्विक तंत्र। और सिक्स दर्शन के अंतर्गत छह दर्शन आते हैं, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग और सांख्य। तो ये टोटल मिला के इसको बोलते हैं वैदिक वैदिक नॉलेज। समझ में आ रहा है? तो जब कोई वैदिक नॉलेज जब बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं केवल चार वेद, ठीक है। अभी से जब मैं वैदिक नॉलेज बोलूंगा तो अभी मत सोचिए महाभारत रामायण सब वैदिक नॉलेज के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम वेदों को समझते हैं।
इसमें वास्तु वगैरह भी दिया हुआ था,
सब उसी में है,
स्मृति में है।
हाँ, सब इसी में आता है।
सर, इसमें तामसिक
उसके बारे में बताएंगे आप, ठीक है। तामसिक होते हैं जिसको मोड ऑफ इग्नोरेंस जिस जो कि तमोगुण, तमोगुण में जो होता है, तमोगुण का उसको बाद में डिटेल बताया जाएगा, क्योंकि अभी टॉपिक नहीं है वो। तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये तीन होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तीन चेतना के लेवल्स होते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल, तो उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे हम, इसको डिटेल में भगवत गीता में बताएंगे भगवान कृष्ण के पास। आज के लेक्चर में जो है हम लोग पांच पॉइंट कवर करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? द वंडर वर्ल्ड माइथोलॉजी, जिसको बोला है वंडर वर्ल्ड माइथोलॉजी। ये आश्चर्यजनक है शब्द, अंधविश्वास, इस कनेक्शन विद कैसे ये जुड़ा वेदों के साथ, क्योंकि आज से 150 वर्ष पहले 200 वर्ष पहले भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कभी सोच भी सकता है कि वेद जो है अंधविश्वास है। ये जो शब्द अंधविश्वास शब्द जो जुड़ा, ये पिछले 150-200 साल के बीच में ये जुड़ा है, इससे पहले नहीं था ये सब। इससे पहले यहां तक कि हर व्यक्ति बड़ा ही गंभीरता से वेदों का अध्ययन करता था भारत। तो ये शब्द जुड़ा कैसे अंधविश्वास, इसका इतिहास हम थोड़ा पढ़ेंगे आज, जानेंगे कैसे जुड़ गए, कैसे जो वेद जो जिसको बोलते थे एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना, जिसको बोलते सर्वोत्तम सत्य, परम सत्य जिसको बोला जाता था, वो कैसे जो अंधविश्वास में बदला, परम सत्य से अंधविश्वास कैसे बनाइए, इसके पीछे बड़ा ही रोचक इतिहास है जो कि आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे हाउ इट गॉट स्टार्टेड, कैसे ये शुरू हुआ, फिर उसको रिफ्यूटेशंस। उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडर्न रिसर्च है जो वेदा, साइंटिफिक वेरिफिकेशन ऑफ वैदिक नॉलेज, वैदिक ज्ञान जो है उसको मॉडर्न रिसर्च के द्वारा प्रूव किया जा रहा है कि जो वेदों में लिखा है वो बन सत्य है। जैसे पिछली बार आपने एक वीडियो दिखाया था, आपको याद है किसका? हाँ, अच्छा, द्वारका के बारे में वीडियो दिखाया था आपको। तो द्वारका में क्या था? तो द्वारका जो समुद्र के अंदर जो पाया गया उसके बारे में बताया था आपको। तो ये द्वारका जो है साइंटिस्ट ने इसको प्राप्त किया है समुद्र के अंदर, तो इसको कहते हैं साइंटिफिक वेरिफिकेशन ऑफ वैदिक नॉलेज। इसका मतलब द्वारका नाम का शहर था, जो जैसा कि महाभारत में वर्णन, ये कल्पना नहीं है, ये मनोकल्पना नहीं है, तो विश्वास नहीं है, ये वास्तविक इतिहास है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे खुदाइयां हो रही है, जैसे जैसे विज्ञान प्रोग्रेस कर रहा है, तो धीरे धीरे नई नई घटनाएं, जो नए जो रिसर्च हो रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि वेद जो एक समय जो वेद को वेदों को अंधविश्वास बताया गया, ये वेद जो अंधविश्वास नहीं बल्कि वास्तविक घटना है। रामायण और महाभारत और ये सब जितनी इतिहास की घटनाएं जो वेदों में रिकॉर्ड है, ये कहानियां नहीं है, जैसे कहानी लिख रहे हैं, जैसे हैरी पॉटर जैसा कहानी नहीं है, बल्कि ये वास्तविक घटनाएं हैं जो इतिहास में ये घटित हुई है। और उसके बाद उसको मॉडर्न रिसर्च अनवेदस, उसके बाद ग्लोरी ऑफ एजुकेशन, तो ये पांच टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कंडीशन, आज का समय ऐसा है कि बहुत मोस्ट ऑफ द इंडियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट इन मॉडर्न यूनिवर्सिटीज एग्री दैट देयर वाज नो सिविलाइजेशन इन द गंगेस बेसिन ऑफ इंडिया 5000 ईयर्स एगो, 5000 वर्ष पहले कोई ऐसा सभ्यता नहीं था भारत में, ये मानते हैं लोग। ये वेद शास्त्र ये सब अंधविश्वास है, बहुत कॉमन ये धारणा है आजकल के लोगों में, और आप लोगों के अंदर भी हो सकता है, कुछ लोगों के अंदर हो। तो ये ऐसे शुरुआत कैसे हुआ? तो ये शुरुआत हुआ था, जो आप जानते हैं जर्नी जो है भारत, आज जो आप भारत देखते हो ये वास्तविक भारत का बहुत बदला हुआ रूप है। पिछले 1500 वर्षों के लगातार आक्रमणों द्वारा जो भारत बार बार परिवर्तित होता रहा, जितनी बार आक्रमण हुए उतनी बार सभ्यताएं बदली, उतनी बार रिचुअल्स बदले, उतनी बार जो है लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, मंदिर तोड़े गए, कई प्रकार से जो बर्बादी हुई, इसका बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया ऐतिहासिक किताबों में। और आज जो आप भारत देखते हो ये भारत बिल्कुल बदला हुआ भारत है। जैसे आप जानते हैं कि कई ऐसे शहर थे जो पहले, वो आज उनके नाम बदल दिए गए हैं, जैसे कि आपका शहर जिसमें आप रहते हैं, इसका क्या नाम है? अजमेर। आपको वेदों में ऐसा नाम नहीं मिलेगा, ये नाम बाद में दिए गए। आप बुलंदशहर जानते हैं? बुलंदशहर एक जगह है, वो बुलंदशहर नाम पहले नहीं था, उसका दूसरा नाम था। इलाहाबाद जानते हैं? इलाहाबाद का नाम पहले क्या था?
वाराणसी का, तो सर काशी का इलाहाबाद का नाम बदला।
सुनिए, जो मैं बहुत प्रोग्राम वही उत्तर दीजिए, अपना जोड़िए घटाइए। इलाहाबाद जो है उसका क्या नाम था पहले?
प्रयागराज।
प्रयागराज कितना मशहूर है वैदिक लिटरेचर में, उसका नाम बदल दिया गया। इस तरह से कई ऐसे शहरों के नाम बदले गए, कई ऐसे लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। आज आप भारत में जितने मुस्लिम देखते हो ये सारे हिंदू हैं, वास्तव में कन्वर्टेड मुस्लिम है, ओरिजिनल मुस्लिम नहीं है, परिवर्तित किए गए हैं। तो आज उसके बाद कुछ परिवर्तन लाया गया मुस्लिम अटैक के द्वारा, और उसके बाद जो बचा था वो परिवर्तन, मुस्लिम उतने परिवर्तन नहीं ला पाए, उन्होंने बाहर से थोड़ा सा जबरदस्ती किया, तलवार के बल पे थोड़ा जो परिवर्तन किया, लेकिन उससे ज्यादा परिवर्तन जो किया वो ब्रिटिशर्स ने किया है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लोगों को तलवार के बल पे नहीं परिवर्तित किया, बल्कि उन्होंने कलम के बल पे, शिक्षा के बल पे उन्होंने उनके धर्म को परिवर्तित कर दिया, शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के अंदर जो है स्वीटली ऐसे चीजें डाली जिसके द्वारा लोगों का अपने धर्म से विश्वास उठता चला गया। इसका प्रमाण आपको दिखाएं, ये जांच सोची समझी नीति है, ये नीति थी, इसको प्लान किया हुआ था। तो वैसे अभी मैं आप लोगों का फीडबैक पढ़ रहा था, तो किसी ने फीडबैक, आपने किसी भक्त ने फीडबैक दिया है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग इतना क्यों कर रहे हो हमारे, है ना, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, अगर आपको मैं बताऊं कि क्रिश्चियंस कितना कर रहे हैं आपके देश में, तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिश्चियनिटी मिशनरीज हैं वो हर साल अपने भारत में 5,000 क्रिश्चियन मिशनरीज कार्य कर रही हैं। कोई यहाँ क्रिश्चियंस हैं? यू नो दिस, है कि नहीं? क्रिश्चियंस कार्य कर रहे हैं 5,000 ना मिशनरीज। और पता है कितने खर्चे होते हैं? नहीं पता। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं वेटिकन सिटी से, वेटिकन सिटी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं इंडिया में, और लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। और उसके बाद क्या किया जाए? आप धर्म परिवर्तन कीजिए। तो हम आपको तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको 4,000-5,000, वो भी हम अपने पास से थोड़े ना दे रहे हैं। ये तो सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है। हम समाज सुधार कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन कैरेक्टर बिल्डअप में ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोगों को। ये सरकार की ये नीति बनी है, जो भी व्यक्ति समाज सुधार का कार्य करेगा उसको बोलते हैं एनजीओ का नाम सुना होगा आपको, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हेल्प मिलता है। कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि आपको 5% to 10% जो प्रॉफिट हो जो होगा आपका, सब कुछ भाग जो है आपको सोशल वर्क में लगाना है। तो उसका तो वहां से हम जो है लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप डोनेट करो, ताकि हम स्टूडेंट्स में यंग जनरेशन में जो है सामाजिक भावना और उनको मानवीय मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, जो गिरावट आ रही है समाज में, उसको फिर से ठीक किया जाए। तो वहां से हम जो है जो हम एक तरफ जो देते हैं दूसरी तरफ बांट देते हैं, हम क्या है आपसे नहीं ले सकते, अगर आप में से कोई देना चाहें तो आप भी दे सकते हो, हम आपसे भी दे देंगे। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आप लोग जॉब नहीं कर रहे हो, इसलिए आपसे पैसा हम नहीं लेते। अंडरस्टैंड पॉइंट, आपस में बात मत करिए प्लीज। अभी हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कि जो बीच में बात करेगा उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, प्लीज। तो आप अच्छे से बताइएगा जो बात कर रहे हैं, कौन बात की थी अभी, कौन बात कर रहे थे, कौन बात की थी, अपने आप ऑनेस्टली बता दीजिए। प्लीज प्लीज कोऑपरेट, हम आपको कुछ जस्ट ताकि डिस्कशन प्रॉपर चले इसके लिए हम रूल बनाए हैं। नहीं कि आपको हम डिसिप्लिन करना चाहते हैं, डिसिप्लिन इज गुड, इन डिसिप्लिन इज बैड, अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज डू नॉट कम, ब्रेक हो जाता है, फ्लो जो है ब्रेक हो जाता है, टाइम ही वेस्ट होगा, जितनी बार फ्लो ब्रेक होगा उतनी बार टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरह से हम जो है वो आपको, आप में से भी अगर कोई देना चाहे, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लूंगा, मैं दे सकता हूँ, तो दीजिए, वेलकम करेंगे, लेकिन बट जैसा कि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स नॉट अर्निंग, इसलिए उनको चार्ज नहीं करते। चार्ज अब पहले प्रोग्राम के लिए किया था 30 रुपीज, जो भी 10 रुपये तभी करते हैं, जस्ट मिनिमम चार्ज हो रहा है, देख सके कौन ये ईगर है हमने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है एजुकेशन के लिए, तो इसलिए और कोई पर्पस नहीं है इसके पीछे। हमारा मेन पर्पस है कि आप सुखी हों, ये मेरा हमारा पर्पस है। तो आप जो है आपके आपका चरित्र निर्माण हो, आप जो है वो अपने लाइफ को डिसिप्लिन करें, गुड हैबिट्स डेवलप करें, जिसके द्वारा जो है आप देश के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक हेल्पिंग हैंड बने, आप जो समाज के धरोहर बने, समाज के लिए एक मिसाल बने, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और क्या कार्य हो सकता है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। और आप इसके बाद जो है कम से कम आप इतना तो करेंगे कि कहीं भी आप जाओगे, जॉब करोगे तो इतना तो याद रखोगे ना कि हमारे लिए किसी ने हमारे जीवन को सुधारने के लिए कुछ किया था, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? इतनी तो भावना रहेगी हम सब, वही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आंसर था फिल्टर का जिन्होंने भी दिया था, इसको आप समझ लीजिए। तो ये जो परिवर्तन जो शुरू हुआ था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन्होंने क्या किया कि जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग जो है वो वेदों पर उनका इतना विश्वास था, और वेदों में जो है वो समुद्र के उस पार से जो लोग आते हैं उनको बोला जाता मलेच्छ, बोला जाता था मलेच्छ और यवन। तो जो ब्राह्मण कास्ट के लोग थे उनका आत्मस्वाभिमान इतना ज्यादा था, स्वाभिमान बोले भी परछाई भी नहीं छनी है, ये मलेच्छ है इनकी परछाई भी। वास्तव मलेच्छ का अर्थ होता है कि जिसका आध्यात्मिक जीवन बहुत बुरा हो और जो जानवर की तरह जीवन व्यतीत करता है, जो जिसका कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, रेगुलेशन नहीं है ना, नो रेगुलेशन है, अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ है, अनरिस्ट्रिक्टेड है ना मीट ईटिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड इंटॉक्सिकेशन नशापान, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता था मलेच्छ, मलेच्छ तरीके से। और आर्य का मतलब जिसका कंट्रोल रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, वेरी हाई लेवल ऑफ कैरेक्टर, तो इस तरह से ऐसे लोगों को कैटेगराइज किया गया था। चार वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और शूद्र से नीचे भी कुछ वर्ण थे जिसको कि आर्य सभ्यता में नहीं माना जाता था। ये चार शूद्र तक जो है वो आर्यन सिविलाइजेशन में आता था, लेकिन उससे जो नीचे थे उसको अनार्य बोलते थे। अनार्य का मतलब जो उससे नीचे उसमें आते थे मलेच्छ, यवन, चंडाल और इस तरह से और कई जातियां होती थी। तो क्यों, इसका आधार ये था कि इनके कैरेक्टर्स जो है बहुत डिग्रेडेड होते थे, तो ऐसे लोगों को आर्यन की कैटेगरी में, आर्यन मतलब सिविलाइज सभ्य व्यक्ति, और अनार्य मतलब असभ्य, इस तरह से कैटेगरी जो करते थे। तो जब देखा कि हम तो यहाँ पे कब्जा करने आए हैं और ये तो हमसे हमारे अंडर में आने के लिए कैसे तैयार होंगे, जिनको इतना विश्वास है कि हम तो मतलब हाई क्लास हैं, ये तो बहुत लो क्लास है, तो जब तक इनके मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी भारत को कब्जा नहीं कर सकते। इसलिए स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया, उसके बाद ये पाया गया कि भारत को कब्जा करने का दो तरीका है। एक तो फर्स्ट पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, जो कि आप जानते होंगे फुट डालो और राज्य करो, शासन करो, और दूसरा लोगों का विश्वास जो उनके वैदिक धर्म सनातन धर्म पे है उसको तोड़ दो, क्योंकि यही रीढ़ की हड्डी है भारत, यही इनके कॉन्फिडेंस का आधार है जिसके वजह से सरकार टिकी हुई। तो वो कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि वेदों को हम चेंज करेंगे, वेदों को, उन्होंने क्या किया, वेदों को स्टडी करने के लिए संस्कृत सीखना शुरू किया। इसलिए आप जानते हैं कई ऐसे इंडोलॉजिस्ट, उनको बोला था इंडोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट का नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना होगा। ये इंडोलॉजिस्ट थे जो क्या करते थे, संस्कृत सीखते थे पहले, उसके बाद संस्कृत सीख के और फिर जो है वेदों का अध्ययन करते थे, और फिर वेदों का अध्ययन करने के बाद उसको प्रूव करते थे कि कैसे जो है वेदों में जो है वो अंधविश्वास है, और इसके बाद बता दिया ये सब झूठी कहानियां हैं, हम आपको बताएंगे भारत का इतिहास क्या है, ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। और फिर उन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐड किया एजुकेशन सिस्टम, आज जो आपका एजुकेशन सिस्टम है इसको बताया मैं कॉलेज एजुकेशन सिस्टम, कॉलेज एजुकेशन सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री डिटेल में। मैं कॉलेज एजुकेशन सिस्टम नाम इसका इसलिए पढ़ा क्योंकि लॉर्ड मैकॉले जो 1850 के लगभग में भारत के जो है गवर्नर थे, तो उन्होंने जो है पूरे भारत, ये नहीं पहले भारत में शिक्षा नहीं होती थी, स्कूल्स नहीं थे, ऐसा नहीं था भारत। आज जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सारे सब्जेक्ट पहले ही थे, सिविल इंजीनियरिंग था, सिविल इंजीनियरिंग नहीं था तो इतने बड़े बड़े मंदिर कैसे बनते थे। आप ताजमहल को देखिए, ताजमहल जो बना है उसमें क्या सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, कितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। आप देखो बिना थियोडोलाइट के और बिना मॉडर्न एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स के कैसे इतना अलाइनमेंट किया गया, बिल्कुल आप देखो जाके सामने से आपको थोड़ा भी एरर नहीं मिलेगा इधर उधर, परफेक्ट अलाइनमेंट, इतना राउंड शेप है। सोचो कैसे बनाए होगा राउंड शेप बिना ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग के, तो ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग था, हर चीज था, वास्तुशास्त्र था, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग था। आपको पता होगा जगन्नाथपुरी का मंदिर कितने लोगों ने देखा है, जगन्नाथपुरी का मंदिर 300 फीट ऊंचा है, 300 फीट आए, और जो सबसे ऊपर के जो पत्थर हैं, एक एक पत्थर का वजन 4 टन 5 टन है, सोचो 300 फीट ऊंचा 5 टन पत्थर कैसे चढ़ाया होगा बिना मशीन के, बिना साइंस के, मतलब तो साइंस था, विज्ञान था पहले, उसकी पढ़ाई होती थी, इसकी ट्रेनिंग होती थी, सिखाया जाता था, एजुकेशन में बताया जाता था। इस तरह से इतने बड़े बड़े मंदिर, आज ऐसा मंदिर बनाओ देखो आपको कितने खर्चे आएंगे, और आजकल के बिल्डिंग्स का डिजाइन पीरियड कितना होता है, कोई सिविल इंजीनियर है यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग, हाँ डिजाइन पीरियड कितने साल के लिए डिजाइन करते हैं बिल्डिंग। मैं सिविल इंजीनियर इसलिए आपको बता सकता हूँ, फर्स्ट ईयर नो प्रॉब्लम। तो ये बिल्डिंग जो हम डिजाइन करते हैं मैक्सिमम 100 ईयर्स लाइफ स्पैन, 100-200 बिल्डिंग, उससे ज्यादा नहीं डिजाइन पीरियड है, जहाँ देखो स्ट्रक्चर 200 साल के बाद गिरने लगते हैं, सीमेंट और ये उसमें से कॉन्क्रीट निकलने लगता है। लेकिन आप देखो वैदिक स्ट्रक्चर जो है, ये मंदिर कितने सालों से टिके हुए हैं आज भी आप देख सकते हैं, जो ताजमहल है कम से कम 500 वर्ष पुराना है कि नहीं। इसके अलावा जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो 1000 वर्ष पुराना है, आज भी जाओ देखो मंदिर कितना स्ट्रांग है। तो इसका मतलब साइंस टेक्नोलॉजी था और पढ़ाया ही जाता था, और इसके अलावा जो है यहाँ तक कि मेडिकल साइंस भी था, आयुर्वेद, ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी स्कूल्स में, सिखाया जाता था लोगों को। लेकिन जब मैकॉले के जब समय आया उस समय भारत के एजुकेशन सिस्टम को ब्रेक कर दिया गया, पहले चलता था, तो नया एजुकेशन सिस्टम लाया गया, तो नया एजुकेशन सिस्टम जो पुराने सिस्टम थे उसको क्लोज कर दिया गया, और कहीं था भी तो उसको ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को क्या किया उन्होंने, रोटी से जोड़ दिया। मतलब कि अगर आपको अगर खाने के लिए पैसा प्राप्त करना है तो आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, और शिक्षा जो वो अगर आपको पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए आपको जॉब चाहिए, और अगर आपको जॉब लेना है तो आपको एजुकेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, और अगर एजुकेशन करेंगे तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा जो हम आपको पढ़ाना। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर। अब वहां से फैक्ट्री शुरू हो गई, ठीक है, और उसके बाद जो है उसमें इंग्लिश कंपलसरी कर दिया गया, जैसे कि आप बता रहे थे अगर आपको जॉब प्राप्त करना है हाई क्लास का जॉब तो आपको इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। और उस समय जो सिस्टम बना उस समय तो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, लेकिन आज जो है बिल्कुल पूरा इम्प्लीमेंट हो गया है। आज देखो जो हिंदी जानता है उसको जॉब मिलेगी, जो इंग्लिश नहीं जानता है बताओ, मतलब कि आप अपने ही देश में रह के विदेशी हैं, है कि नहीं। तो ये जो चेंज है ये उस समय का परिणाम है, जो कि पॉलिसी उस समय बनाई गई थी 1850 के लगभग जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें मैकॉले ने बोला था कि हम लोग जो ब्राउन साहिब प्रोड्यूस करेंगे, ब्राउन साहिब उस समय का पॉलिसी था। आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा मैं, आप ऐसे ही नहीं बोल रहे हो, अभी मैं स्लाइड्स में स्टेटमेंट दिखाऊंगा मैकॉले का स्टेटमेंट, जो कॉलेज एस्टेब्लिश करते थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था, उसका पर्पस ये नहीं, केवल ये नहीं था कि आपको एजुकेशन देना है, उसका पर्पस था कि धर्म परिवर्तन करना। प्रमाण दिखाऊंगा, ये सारे उतना डिटेल में नहीं पढ़ूंगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इंटरेस्ट वॉज नॉट एजुकेशन बट कन्वर्जन। तो प्रोमिनेंट मिशनरी एलेक्जेंडर डफ कलकत्ता में जो एक कॉलेज बना था, स्कॉटिश चर्चिस कॉलेज कलकत्ता, आज भी है। तो ये कॉलेज जो है एलेक्जेंडर डफ ने एस्टेब्लिश किया था, और उसका गोल था, उसके अपने शब्दों में यहां लिखा है, हेडक्वार्टर्स फॉर ए ग्रेट कैंपेन अगेंस्ट हिंदुइज्म। तो हिंदुत्व के खिलाफ जो है एक बड़ा यहां से कैंपेन स्टार्ट किया जाएगा, और उसका हेडक्वार्टर होगा स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज। डफ सॉट टू कन्वर्ट द इंडियंस बाय एनरोलिंग देम इन इंग्लिश रन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन लर्निंग क्रिश्चियनिटी थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। डफ रोड, While we rejoice that true literature and science are to be substituted in place of what is demonstrably false, we cannot but lament that no provision has been made for substituting the only true religion, Christianity. Only true religion, Christianity. Baki sab bekar hai. In place of the false religion, so Hindu is false religion, which our literature and science will inevitably demolish. तो हमारा एजुकेशन और साइंस है उसको एक दिन गिरा देंगे हम, हिंदू रिलीजन। Of all the systems of false religion over fabricated by the perverse ingenuity of fallen man, Hinduism is surely the most stupendous. So Hindu religion है जो सबसे ज्यादा stupendous religion है। Stupendous मतलब क्या होता है? Stupid का अर्थ क्या होता है? पुलिस। तो सबसे ज्यादा पुलिस लोग जो है धरती पे ऊपर हिंदू। आप एक्सेप्ट करोगे कि हमारे जितने ऋषि मुनि थे मूर्ख थे? सो दिस वाज देयर मोटिव बिहाइंड ऑल दिस। दिस द हार्स रियलिटी एंड इन देयर ओन लैंग्वेज वी आर स्पीकिंग, यानी कि हमने बनाया ये स्टेटमेंट। फॉर्चुनेटली ये सारे लेटर्स जो है वो रिकॉर्ड है आज भी। इसके अलावा आप देखो, ये मैकॉले है जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया था भारत का। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम किसी के अगेंस्ट एनिमी बने, हमारी दुश्मनी नहीं है किसी से, कि मैं हम चाहते हैं कि आप आज से क्रिश्चियंस के अगेंस्ट बाहर करो, हम ये नहीं कर रहे हैं। आपको हमारा कहना है कि हमें समझना है चीजों को। हो सकता है कोई क्रिश्चियनिटी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रिलीजन, इट्स ऑल्सो ऑथराइज बाई गॉड, बट नॉट ओनली रिलीजन। दैट इज अ गुड पॉइंट। सनातन धर्म ऑल्सो इज नॉट ओनली रिलीजन, कहने की केवल हिंदू रिलीजन है, नो। रिलीजन कैन बी मेनी। भगवान कई प्रकार के धर्म बनाते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के धर्म बनते हैं। इस्लाम रिलीजन, दैट इज ऑल्सो ऑथराइज बाई गॉड। हम नहीं कहते कि इस्लाम रिलीजन गलत है, क्रिश्चियनिटी गलत है, मैं चूंकि हिंदू इसलिए क्रिश्चियनिटी गलत है, ऐसा नहीं। हर रिलीजन को बनाने के धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत धर्म भगवान द्वारा बनाई जाती है, और ये धर्म का उद्देश्य होता है लोगों को भगवान से जोड़ना, लोगों के हृदय को परिवर्तित करना। रिलीजन का उद्देश्य कन्वर्जन नहीं होता है, संख्या बढ़ाना नहीं होता है। हृदय परिवर्तित नहीं हुआ लेकिन संख्या बढ़ रही है, क्या फायदा? हृदय तो वैसा का वैसा ही है, जो चोरी कर रहा है चोरी कर ही रहा है, जो घूस ले रहा है घूस ले ही रहा है। केवल मुझ हिंदू बनने से आप भगवान को प्रिय हो जाओगे? केवल स्टैंप लगा देने से आप हिंदू बन जाओगे, क्रिश्चियंस बन जाओगे? रिलीजन इज अ मैटर ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसलिए हर धर्म का उद्देश्य हृदय परिवर्तन। जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया ताकि लोगों का हृदय परिवर्तित हो। क्यों? क्योंकि भगवान के जो है वो क्लोज एसोसिएट थे, हृदय में करुणा थी उनके हृदय में, है कि नहीं? उन्होंने लोगों के हृदय को परिवर्तित किया, केवल धर्म परिवर्तित नहीं किया, केवल संख्या नहीं बढ़ी, उसी तरह से हर धर्म का उद्देश्य समझना है हमें, और हर धर्म का उद्देश्य सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं तो वी क्रिएट एनमिटी अमंग ईच अदर। हम एक दूसरे को मारते हैं धर्म के नाम पे, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, हम एक दूसरे को जैसे कि यहाँ पे नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, स्टूपेंडस। ये कहते हैं कि जब धर्म में जो है फनेटिसिज्म आता है, हम सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, बाकी सब बेकार है, इसको कहते हैं फनेटिसिज्म। आप देखो अगर सारे धर्मों की अगर तुलना भी की जाए तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने किसी का आज तक अटैक नहीं किया। लिव इन हार्मनी, यूनिवर्सल रिलीजन है सनातन धर्म। क्यों? क्योंकि किसी को प्रताड़ित नहीं करता है सनातन धर्म। आज देखो भारत के 10,000 साल का इतिहास देखो, भारत ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। किया चाइना ने भारत पर अटैक किया, फिर भी भारत ने पाकिस्तान को जीत लिया था 1970 इधर सन 1971 में जब बांग्लादेश के लिए युद्ध हुआ था तो भारत की सेना कराची तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी भारत ने छोड़ दिया। शासन करना, रूल करना, लोगों को प्रताड़ित करना, ये भारत के इतिहास में नहीं, धर्मशास्त्र में नहीं। फिर देखिए सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे संतु निराम, लेट एवरी वन बी हैप्पी। ये नहीं कि केवल हिंदू जना सुखिनो भवन्तु, कहाँ लिखा है हिंदू केवल हिंदू का है? अब भगवद्गीता पढ़ो, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। यूनिवर्सल रिलीजन सबके लिए है, सबको खुश रहने दो, सबको सुखी रहने, इसके लिए धर्म है। लेकिन जो व्यक्ति इसको नहीं समझता है वो सोचता है ये माइथोलॉजी का विश्वास है। तो हमारा प्रयास ये नहीं कि हम दुश्मन बने, हमारे लिए सब भाई। इसीलिए देखो भारत जो मुट्ठी भर लोग आए भारत में, आए ना, भारत अगर चाहता तो उनको एक झटके में मार के भगा सकता था। भारत का ये प्रिंसिपल है एब्जॉर्ब्स एवरीवन, सबको स्वीकार करता है, सबको स्वीकार कर लेता है, कोई भी कल्चर आए इसमें फिट हो जाता है, क्योंकि लोगों के हृदय में स्थान है, और जिसके हृदय में स्थान है वो सबको स्थान दे देता है धीरे धीरे। तो उस तरह से हम देखते हैं कि कैसे जब भारत ने जो है कभी किसी को, क्योंकि सनातन धर्म का प्रिंसिपल है सबको सुखी रहने, तो ये जो सिद्धांत है वो इसको अब कोई बोलता है माइथोलॉजी है अंधविश्वास। इसमें क्या माइथोलॉजी है? क्या सब लोगों को सुखी रखना ये गलत है? अगर ये बताया गया वैदिक शास्त्र तो क्या ये माइथोलॉजी है? भगवद्गीता का ज्ञान क्या माइथोलॉजी अंधविश्वास है? भगवद्गीता के ज्ञान में कितना उत्तम ज्ञान दिया गया, ये अंधविश्वास है? तो इस तरह से ये प्रचार किया गया, इस तरह से इसको डाल दिया एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन में क्या किया? इतिहास पढ़ाना शुरू किया गया। इतिहास की जरूरत क्या है? इतिहास सीखने से क्या फायदा है? इतिहास सीखने से फायदा यह है कि हम अपने पिछले पूर्वजों के इतिहास को जानें, तो उससे शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन आपके इतिहास में कितनी शिक्षा दी जाती है? इसके लाइफ से यह शिक्षा मिलती है, अनुमान के आधार पर कुछ खुदा ही मिला, उसके आधार पर कुछ प्रोजेक्ट किया जाए, वो भी सत्य इतिहास है कि नहीं कन्फर्म नहीं। तो इतिहास जो है पढ़ाना शुरू किया गया, सब्जेक्ट में डाला गया, इसका पर्पस था, इसका उद्देश्य ये था, पुराना इतिहास है उसको दुरुस्त। पहले महाभारत, महाभारत क्या है? भारत का इतिहास है, अलग से इतिहास लिखने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता ये है कि वो इतिहास गलत है, अंधविश्वास है, और हम बताएंगे कि आपका इतिहास क्या है। तो मान लीजिए अगर आप अपने दुश्मन को बोलते हैं कि मेरे घर का इतिहास लिखो, अपने दुश्मन को अगर आप बोलेंगे कि मेरे घर का इतिहास लिखो तो क्या लिखेगा? आपकी बड़ाई करेगा? यही लिखेगा ना कि आपके परदादा ने मेरे परदादा से 10 करोड़ रुपया लिया तो जो आज नहीं चुकाया था, आप चाहे तो चुका सकते हैं। तो यही लिखा गया इतिहास में कि आप लोग जो थे आर्य जो थे, ये आर्य भारत के निवासी नहीं है, ये कहां से आए हैं? बाहर से आए, ईरान, यूरोप, मिडिल ईस्ट से आए हैं, उधर से आए हैं, और यहाँ के जो ओरिजिनल निवासी है द्रविड़ियन, उनको खदेड़ दिया। इसके लिए एक थ्योरी दिया आर्यन इन्वेशन थ्योरी, जो कि बिल्कुल गलत थ्योरी है, जो आज डिस्प्रूव हो गई है थ्योरी। आर्य जो है आप बाहर के निवासी नहीं है। अगर मान लीजिए आर्य यूरोप से आए हैं, अगर आर्यन आर्य जो है यूरोप से आए हैं या उधर से आए हैं, तो फिर जो आर्यों ने जो लिटरेचर लिखा है उसमें यूरोप का वर्णन क्यों नहीं आता? केवल भारत के सारे नदियों का, भारत के सारे तीर्थ स्थलों का वर्णन क्यों है? क्यों ऐसा मेंशन क्यों नहीं है वेदों में कि हम बाहर से आए हैं? कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। भारत महाभारत में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आर्य जो है हम लोग बाहर से आए थे और यहाँ के बसे हैं, कहीं नहीं लिखा है। कहीं तो कुछ हिंट रहता ना। और बताते हैं कि अगर द्रविड़ियन अलग थे और आर्य अलग थे, तो आर्य जो है आर्यों का जो ग्रंथ लिखा गया उसमें साउथ इंडिया के जो है नदियों का वर्णन किए हुए, साउथ इंडिया में भी होली प्लेसेज हैं, तीर्थ स्थल हैं, इसका वर्णन वैदिक शास्त्रों में है। तो ऐसा क्यों? इसलिए धीरे धीरे ये जो है ये गलत सिद्धांत दिया गया, ताकि हमें पता जाए कि आप लोग इतना घमंड कर रहे हो, इतना घमंड करने की बात नहीं है, आप लोग यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो, तो भारत से इतना आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से इतिहास को धीरे धीरे और इतिहास में बताया गया कि वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व है। आप लोग पढ़ते हो ना इतिहास में वैदिक काल क्या होता है, 1500 ईसा पूर्व। और ये गलत साबित हो गया अभी। कैसे? तो आप पुराणों में अगर आप पढ़ेंगे महाभारत में, तो वहां पे सरस्वती नदी का वर्णन है, आप लोग जानते होंगे गंगा जमुना और सरस्वती नदी, ये तीन प्रमुख नदियां थी। तो सरस्वती नदी जो है उसको लिखा गया कि अप्रकट हो गई थी नदी, तो वैदिक काल में ये नदी थी, वैदिक काल में ये नदी थी, लेकिन बाद में क्या हो गई? अभी क्या है, अभी जो है जो नए आए हैं उनको, उनके लिए फिर से बता देता हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट आपस में बात जो भी करेगा उस पर हम लोग डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, ठीक है? आपस में बात मत कीजिए तो तुरंत है ना उस आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ओके? तो सरस्वती नदी जो थी उसको बाद में, अभी देखिए पिछले 10 साल पहले ये नदी का पूरा एक ट्रैक प्राप्त हुआ है सैटेलाइट में, जो मैंने दिखाया था आपको पिछली बार, और बताया गया जाता है डेटिंग से बताया गया कि ये नदी आज 3000 बीसी में बहती थी और 3000 बीसी में डिसअपियर हो गई। तो 3000 बीसी में अगर नदी ईसा पूर्व में अगर सरस्वती नदी डिसअपियर हो गई थी और उसका वर्णन जो है वैदिक काल में है, तो फिर वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व में कैसे हो सकता है? BC में सरस्वती नदी खत्म हुई थी और 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल था और वैदिक काल में सरस्वती नदी थी, तो दोनों एक साथ कैसे सत्य हो सकते? तो इसलिए ये जो इतिहास फिट किया गया अकॉर्डिंग टू बाइबल, इंडिया के इतिहास जो है वो बाइबल के हिसाब से फिट किया गया। कैसे? बाइबल में का मानना है कि पृथ्वी की रचना 4000 ईसा पूर्व में हुई थी उस समय जी। आज तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, आज तो बहुत सारी चीजें बदल, धारणाएं बदल गई, लेकिन आज से 200 वर्ष पहले बाइबल के हिसाब से लोग यही मानते थे कि 4000 ईसा पूर्व में पृथ्वी की रचना हुई, और अगर 4000 ईसा पूर्व में रचना हुई है तो 1000 वर्ष लगे होंगे थोड़ा सेटल उटल होने में, तो 3000 से टाइम है शुरू करने का भारत का इतिहास। 3000 ईसा पूर्व से पहले आपको कोई भी इतिहास पढ़िए भारत कोई भी डेट नहीं मिलेगा, मतलब कि भारत के इतिहास 3000 वर्ष पहले कुछ था ही नहीं, और 3000 वर्ष पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का डेट दिया गया जो कि 2500 में खत्म हो गई वही सभ्यता, और उसके बाद जो 500 ईसा पूर्व जो बुद्ध का पीरियड है, तो वैदिक काल का पीरियड कब है, तो दोनों का एवरेज निकाल लिया जाए, 3000 2500 और 500 का एवरेज कितना होगा? 1500। तो 1500 वैदिक काल, इस तरह से उन्होंने वैदिक काल का टाइमिंग फिक्स किया इतिहास। बताओ और ये आप सुनते हैं, ये आपका इतिहास है। तो इस तरह से उन्होंने इतिहास को बदल दिया, हमारी लैंग्वेज लैंग्वेज बदली गई पूरी, और एजुकेशन सिस्टम ऐसा रचा गया कि अगर आप जो संस्कृत पढ़ते हो तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। इसलिए संस्कृत पढ़ेंगे नहीं लोग, और संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो वेद पढ़ेंगे नहीं, और वेद पढ़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे उनका वेदों से दिया विश्वास टूट जाएगा। बस सिंपल इतना। तो इस तरह से आप देखो जो पॉलिसी उस समय बनाई गई थी आज पूरी तरह से फलीभूत हो रही है। आज हम लोग इसीलिए पढ़िए स्टेटमेंट पढ़िएगा, ये देखिए मैकॉले का स्टेटमेंट है, इट इज माई बिलीफ दैट इफ आवर प्लान्स ऑफ एजुकेशन आर फॉलोड अप देर विल नॉट बी ए सिंगल आइडोलेटर अमॉन्ग द रेस्पेक्टेबल क्लासेज इन बंगाल 30 years हेंस। Interference with religious liberty by and this will be effected without any efforts to proselytize, without the smallest interference with religious liberty, by natural operation of knowledge and reflection. I heartily rejoice in the project. बड़ा मजा आ रहा है मुझे इस प्रोजेक्ट में। तो अपने पिताजी को पत्र लिखे थे मैं कॉलेज ने 1836 में। ये सारे पत्र जो है वो सौभाग्य कहिए कि सारे रिकॉर्ड आज भी हैं। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा कि इन अदर वर्ड्स लॉर्ड मैकॉले बिलीव्ड दैट बाय नॉलेज एंड रिफ्लेक्शन द हिंदूज वुड टर्न देयर बैक्स अपॉन द रिलीजन ऑफ देयर फोरफादर्स एंड टेक अप क्रिश्चियनिटी। इन ऑर्डर टू डू दिस ही प्लान टू यूज द स्ट्रेंथ ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस अगेंस्ट देम। ही वॉन्टेड टू यूज द स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेटेड इंडियंस अगेंस्ट देम by using their scholarship to uproot their own traditions, or in his own words, Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect. भारत के लोग भारतीय रहेंगे केवल blood और color में, केवल भारत का खून रहेगा, भारत का रंग रहेगा आपका, लेकिन बाकी सब क्या होगा? English in taste, English in opinion, English in moral and English in intellect. He firmly believed that no Hindu who has received an English education ever remains sincerely attached to his religion. कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा जो एक बार भी हमारे एजुकेशन सिस्टम से होके गुजरेगा, उसको ऐसा ब्रेन वॉश किया जाएगा वो सिंसियरली अटैच हो ही नहीं सकता अपने धर्म हिंदू धर्म से। इस तरह से किया जाएगा। So this was his, these are the statements recorded in the letters written by Nicole. आप समझ रहे बात? तो इसके लिए उन्होंने उसको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो वेदों को गलत साबित करे, तो इसके लिए उसको एक बड़ा अच्छा व्यक्ति मिला, उसका नाम था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का नाम सुना है आप लोगों ने? मैक्स मुलर जो था इनका बहुत सारा किताब जो है लिखा गया है। इन्होंने क्या किया, वेदों को ट्रांसलेट किया संस्कृत से इंग्लिश में, क्योंकि बाद में तो संस्कृत लोग जानेंगे नहीं तो वेदों को कैसे जानेंगे, इंग्लिश में होना चाहिए ना। इसलिए एक व्यक्ति होना चाहिए जो चेंज करे वेदों को संस्कृत से इंग्लिश में। इसके लिए उनको बड़ा अच्छा व्यक्ति मिला मैक्स मुलर, जो लंदन में रहता था। और मैक्स मुलर जर्मनी में बैठा था और उसने वहीं से किताबें लिख रहा था, वेदों को ट्रांसलेट कर रहा था। मैक्स मुलर ने 50 किताबें लिखी हैं, सेक्रेट सेक्रेट बुक्स ऑफ ईस्ट करके, टेक्स्ट ऑफ ईस्ट करके उसने 50 वॉल्यूम किताबें लिखी हैं, और उसमें बताया कि वेद बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर लिखा हुआ कविता है, लेकिन दुर्भाग्य की अंधविश्वास है लिखा उसने। बहुत बड़ाई की वेदों की, अरे कितना अच्छा लिखा, कितना अच्छा ग्रामर है, कितना अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन सब अंधविश्वास है। और उसने जो है किताबें लिखी, अब सोचिए, और मैक्स मुलर की किताब जो भारत के लोग पढ़ते, मैक्स मुलर जो कि कभी भारत आया ही नहीं अपने पूरे लाइफ में, उसने देखा ही नहीं कि भारत क्या है और वो वेदों पर किताबें लिख रहा है। वेद का किताब का पर्पज क्या है? तद विज्ञानार्थम स गुरु एवा विगच्छे। इस विज्ञान को जानने के लिए व्यक्ति को एक प्रॉपर गुरु की शरण में जानी चाहिए, तभी वो सीख सकता है। तो मैं पूरे जर्मनी में बैठ के कैसे समझ सकता है वेदों को? केवल आप संस्कृत लैंग्वेज जानने से आप वेदों को नहीं समझ सकते। वेद जो है लैंग्वेज नहीं है, वेद जो है वो हृदय के भाव है। इसको व्यक्ति जो है जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, गुरु के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी, तभी वो वेदों को समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता वेदों। तो कैसे मैक्स मूलर समझ गया जर्मनी में बैठे हुए? तो इसलिए उसको समझ नहीं आया तो उसने बोला ये माइथोलॉजी है। उसको आगे सीखना चाहिए था गुरु के पास। तो इस तरह से मैक्स मूलर ने जो है वो भारत को चेंज किया, वेदों के मीनिंग को चेंज किया, और इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके और वेदों के साथ एक शब्द जोड़ दिया जिसको बोलते हैं माई माइथो अंधविश्वास। वेद शास्त्र जो है वो अंधविश्वास है। और ये पिछले 200 वर्षों में मुस्लिम ये नहीं कर पाए, क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था, इतना मुश्किल था। सोचो 1000 वर्ष तक मुस्लिमों ने अटैक किया, लेकिन ये भारतीय लोगों के विश्वासों को नहीं बदल पाए। लेकिन ब्रिटिशर्स तलवार से नहीं कार्य करते थे, वो कैसे बुद्धि से कार्य करते थे, बुद्धि से। तो कितने थे ब्रिटिशर्स इंडिया में? और जहां भी ब्रिटिशर्स ने युद्ध लड़ी, सेनाएं कहां की थी? उनके तरफ की सेना भारत से ही थी। ब्रिटेन ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था, तो ब्रिटेन में कहां से सेना गई थी? ब्रिटेन की तरफ से भारत की सेना थी। भारत पे भारत की सेना से भारत पे देखिए कई सालों तक मदद है कि $1 trillion जो है वो भारत से लेके गए हैं। भारत जो था वो उसको बोलते थे सोने की चिड़िया बोला जाता था। इतना धन था यहाँ पे भारत में, इतना धन था यहाँ से, लोग इसीलिए आते थे, चोरी करने आते थे, यहाँ चुराने आते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धन था। तो इसलिए भारत कभी गरीब रहा नहीं, आज भी मंगा हो गया पूरे वर्ल्ड बैंक, इस बैंक उस बैंक से मांगना पड़ता है।
आज भी नहीं है, लेकिन आज के नेता लोग इसको भी मंगा बना रहे हैं।
आज भी नहीं, क्योंकि भारत के साथ विस्डम है भारत के साथ, और जिसके पास विस्डम है वो कभी जो है वो गरीब नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप देखो, लेकिन ये गरीब हो जाएगा फिर, जैसे ही विस्डम खत्म होगा। जैसे अमेरिका भी धनी हुआ, लेकिन देखो फिर वो भी गरीब होगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आप आपस में बात मत करो, कौन बात कर रहे हैं बताइए, ऑनेस्टली बताइए, कौन बात कर रहे हैं? तो हमने आपको बताया कि कैसे जो है ये माइथोलॉजी सब ऐड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, साइंटिफिक वेरिफिकेशन ऑफ वैदिक नॉलेज। पिछले कुछ वर्षों में कुछ रिसर्च हुई है जिसमें प्रूफ किया गया है कि वैदिक नॉलेज में विश्वास देखते एक एक करके। तेरह तरीके से हम बताएंगे आपको, 13 बताएंगे एक एक करके, थोड़ा जल्दी जाएगी क्योंकि ज्यादा टॉपिक्स हैं। फर्स्ट, लॉर्ड रामा सेतु फाउंड इन इंडियन ओशन। नासा सेटल इमेजेस ऑफ मिस्टीरियस एंशिएंट ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आपको द रिसेंटली डिस्कवर्ड ब्रिज करेंटली नेम्ड एज एडम्स ब्रिज मेड ऑफ चेन ऑफ सोल्स 18 miles 30 kilometers लॉन्ग इन द पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका रिवील्स ए मिस्ट्री बिहाइंड इट। The bridge's unique curvature and composition by age reveals that it is a man-made bridge. The legends as well as archaeological studies. कौन बोल रहे हैं? आप बोलोगे तो ध्यान पड़ेगा ना सबका। नहीं किसने बात किसने की बताइए आप बता के मेरे कौन है वो इधर प्लीज गेट अप व्हाई आर यू टॉकिंग हु इज टॉकिंग यू टेल मी हु इज टॉकिंग नो हु टॉक यू टेल मी अभी बात किसने किया इन्होंने बात किया था ना
नहीं सर
किसने बात किया is not your subject classes university class try to understand and if you don't tell sare piche ke log mai bahar kar dunga samjhe you are not coming I'm not getting paid for this you understand ye antar hai aapke teacher mein aur mujh mein aap payment nahi kar rahe ho mujhe ki I told you I'm not dependent on you बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में आप मजाक करने आए हो यहाँ पे सो गेट आउट ऑफ दिस दोज हु आर टॉकिंग बिहाइंड यू नॉट गिविंग मी एनीथिंग सो व्हाई आई शुड लिसन यू आई हैव बीन रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट डे आई रिक्वेस्टेड सो मच एंड देन यू ऑल आर नॉट लिसनिंग जस्ट लाइक ए स्टोन हार्ट नो डिसिप्लिन Do you think I am joking here? No. Playing a joke? No. Why are you talking this? And those who are behind, why don't you tell the names? There is a class going on. Very serious point, subject matter. Listen it. Childish figure, your age is to become naughty, but not in the class. After class. After class, I will also talk with you. You can laugh, you can roam around, no problem. But it comes in class with to Sunday school, right? It is a discipline. Without discipline, we are like animals. That's all. Animals doesn't have any discipline. Thank you. Eh? Please do not mind. This is for the discipline of the class.
Okay, sir.
And next time, either I will leave this room, or you have to leave this room. I can't continue with this kind of audience. I don't have this in my blood. You can ask questions. You can discuss. You raise hand. If you want to speak, you raise hand. I said, हाथ उठाइए जो बोलना है मुझसे बात कीजिए. आपको पूरा टाइम दिया जाएगा बोलने का. डिस्कस कीजिए आप बात करें बताइए सो यहां पे बताया गया कि द लीजेंड्स एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल स्टडीज रिवील दैट द फर्स्ट साइंस ऑफ ह्यूमन इनहेबिटेंस इन श्रीलंका डेट बैक टू प्रिमिटिव ऑफ एज 17,50,000 ईयर्स और ये जो ब्रिज मिला है इतना मेहनत करके आप बताओ वी हैव मेड दिस प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू ऑल आर जस्ट इट्स कॉल्ड सो यू नो इनसेंसिटिव पर्सन वी आर पुटिंग सो मच एफर्ट सो टू अंडरस्टैंड दिस इतना मेहनत करके आपको हम बता रहे हैं हर चीज आप लोग एकदम पिछले तीन क्लास में देखता हूँ आपकी तो बनाने में पता है कितना मेहनत लगे आप लोगों को दिखाने के लिए समझाने के लिए रादर देन एप्रिसिएटिंग यू ऑल आर डिस्टर्बिंग द क्लास इसको कहते हैं किसी को कुछ दिया जाए तो वो आसानी से अगर किसी को कुछ दिया जाए तो उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता और ये अगर आपको 1,000 रुपये चार्ज करता तो देन यू टेक इट सीरियसली अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको हम जबरदस्ती तो नहीं बुला रहे हैं मतलब ये आपके फायदे के लिए थोड़ा देखिए आप ना होगा तो मुझे फायदा होगा मेरे गुरु उपकार करोगे आप इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आप लोग समझोगे तो आप समझ पाओगे क्या चीज़ें, कैसे हम अपने जीवन को संभालें, सुधारें, कहाँ गड़बड़ चल रहा है, कहाँ पे समस्या है। तो इस जो ये जो पुल है, इसका उम्र जो है बताया गया है 17 लाख ईयर्स पहले ये बना है, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च। और रामायण का जो पीरियड है, भगवान राम का जो अवतार बताया गया है, उसका भी एज जो है वो अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर वो भी बिल्कुल उसी टाइम पीरियड का है, बिल्कुल 17 लाख अराउंड ही भगवान राम का भी अवतार, 17 लाख वर्ष पहले। तो आपको इन दिस एपिक देयर इज मेंशनिंग अबाउट ए ब्रिज विच वॉज बिल्ड बिटवीन रामेश्वरम एंड श्रीलंका कोर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डायनेमिक एंड इनविंसिबल फिगर कॉल्ड राम हु इज सपोज्ड टू बी द इनकार्नेशन ऑफ दिस बीइंग। दिस इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी ऑफ मच इम्पोर्टेंस टू द आर्कियोलॉजिस्ट हू आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द ओरिजिन्स ऑफ मैन, बट इट इज श्योर टू ओपन द स्पिरिचुअल गेट्स ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू हैव कम टू नो एन एंशिएंट हिस्ट्री लिंक्ड टू द लोकल कल्चर। ये जो सैटेलाइट इमेज है, ये नासा के सैटेलाइट इमेज आपको दिखाया जा रहा है, यू सी दैट इज हियर इज अनदर एंगल क्लोज व्यू। ये सोचिए कितना ऊपर से लिया गया, दूर से लिया गया है तो ऐसा दिखता है, वास्तव में इतना स्ट्रांग है ये, इसको जो है सारे लोग मोबाइल साइलेंट में कर लीजिए, और इतना स्ट्रांग है ये, बताएगा कि इसको इधर से नाव आप नहीं ले जा सकते, इतना स्ट्रांग है, इसको तोड़ने के लिए इसको ब्लास्टिंग करना पड़ेगा तभी टूटेगा। रामायण में जहाँ पे वर्णन किया गया है कि यहाँ पे भगवान गए थे और यहीं से शुरुआत किया बनाना का, तो वहीं से शुरुआत हुआ। इस तरह से सरस्वती रिवर बेड, ये सैटेलाइट इमेज है सरस्वती नदी का, आप देखिए ये सूख गई थी नदी, इसका सैटेलाइट इमेज प्राप्त हुआ है। ये नदी, ये बताया गया है कि इतिहासकारों ने बताया कि जितने सारे खुदाई में नगर मिले हैं वो सब इसी नदी के किनारे पाए गए हैं, सैटेलाइट की वजह से। इसको यहाँ पे इसका डिटेल बताया गया है, बीबीसी न्यूज जो भी आया था 29 जून 2002 को, टाइम्स ऑफ इंडिया डेट 2 मई 2001। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, एविडेंसेस फ्रॉम रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, रिमेन्स ऑफ द्वारका सिटी, ये तीसरा प्रमाण। पहले बताया मैंने आपको रामायण का राम सेतु, दूसरा बताया सरस्वती नदी का, अभी तीसरा जो द्वारका का प्रूफ मिला है समुद्र के अंदर, इसका वीडियो पिछली बार मैंने दिखाया था ना, वीडियो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये मंदिर पूरा जमीन के अंदर से मिला है, प्रथम होल टेम्पल इनसाइड द ग्राउंड। ये दिखाया गया कैसे जो समुद्र के अंदर ये सब पाया गया है, सब कुरुक्षेत्र में भी मिले हैं 2800 BC में। इसके ये हो गया साइंटिफिक वेरिफिकेशन। दूसरा है मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स जो वेदों में दिया गया है ये माइथोलॉजी नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स जो है ये आज भी इसका यूज हो रहा है, देखो कितने सारे फॉर्मूलाज है, एक फॉर्मूला एकाधिकेन पूर्वेण तो इसका यूज करके बताइए कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, इतना आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप वैदिक मैथमेटिक्स में टेक्निक्स दिया गया। जमा लिए 35 × 35 आपको करना है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है 35 का टेबल बताएंगे। 35 × 35 को करना है तो 3 × 3 + 1 कितना हो गया, 3 × 4 कितना हो गया 12 और लास्ट में 25 जोड़िए 5 × 5 = 25। टेक्निक बताए एक आधी के पूर्व
और 5 × 5 और 3 नंबर तो 4 तो 2 आ जाएगा।
जैसे कि 37 अगर आपको पता करना है 37 × 31 कितना होगा तो 3 × 4 कितना हो गया 12 और 7 × 1 कितना हो गया तो 1207। टेक्निक है बताया गया, इट इज नॉट माइथोलॉजी, टेक्निक है, फॉर्मूला है, ये रिसर्च है। इस तरह से ये मैंने कुछ आपको दिखाया है, 37 × 33 बताया गया, 3 × 4 7 × 3 = 21 1221 29 × 21 2 × 3 9 × 609 ये टेक्निक्स बताएंगे वैदिक मैथमेटिक्स सेट जो भी आप पढ़ते हो ये सब चीजें बहुत सारी चीजें हैं तो उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। जस्ट आई एम गिविंग यू ये सब वैदिक मैथमेटिक्स अगर इतना है तो कैसे ये माइथोलॉजी हो सकता है। इट्स नॉट माइथोलॉजी इट्स वर्क ऑफ रिसर्च एंड ग्रेट यू नो स्टडी एल्बर्ट आइंस्टीन से that we owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. The speed of light जो है ऋग्वेद में दिया हुआ है, लाइट की स्पीड कितना है 3 lakh km/s, वेदों में इसका वर्ड दिया हुआ है इसका स्पीड बताया गया है। In the commentary on Rigveda by Sayan, it is said, with deep respect I bow to the sun who travels with 2202 yojan in half a nimis. Adha nimis mein 2202 yojan travel karta hai sun speed of sun. So, agar isko hum calculate karte hain scale pe, to iska aata hai 165,150 miles per second. जो कि उसको अगर 18.852 से गुना करेंगे तो 3,06,000 km/s इज द स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। और आजकल बताया 3 lakh km/s तो क्या ये माइथोलॉजी है, साइंस। आप लोग में कितने लोगों को पता है कि नासा में संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च हुआ है, पता है आपको? देखिए नासा संस्कृत रिपोर्ट में नासा के एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर, रिक ब्रिक्स नासा रिसर्चर, और उन्होंने 1985 में पेपर पब्लिश किया और उसमें बताया है कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, प्रूव किया गया नासा के द्वारा, उसका कंक्लूजन बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पड़ी मॉडर्न साइंटिस्ट हेल द एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स एज द ओनली अनएम्बिगुअस नेचुरल लैंग्वेज ऑफ द प्लैनेट। यही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये प्रूव किया जा चुका है पूरे ना? तो ये नासा का रिपोर्ट है, ये इवन पीपुल आर एक्सेप्टिंग संस्कृत लैंग्वेज, तो ये दिस इज नॉट माइथोलॉजी, इट्स द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अगर एज वी से लॉर्ड मैकॉले, जैसा कि बताया कि स्टुपेंडस लोग हैं, तो स्टुपेंडस लोगों ने इतना बेस्ट लैंग्वेज कैसे प्रोड्यूस कर दिया। नासा द मोस्ट एडवांस्ड रिसर्च सेंटर इन द वर्ल्ड फॉर कटिंग एज टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड दैट संस्कृत The world's oldest spiritual language is the only unambiguous spoken language on the planet. The discovery is of monumental significance. It is mind-boggling to consider that we have available to us a language which has been spoken for 4,000 to 7,000 years, that appears to be in every respect a perfect language designed for enlightened communication. The language itself, as has been universally recognized by those competent to form a judgment, is one of the most magnificent, the most perfect and wonderfully sufficient language in the world. So, if Sanskrit is a perfect language, hai, that's what very little say, this is the Dev Bhasa. Dev Bhasa ka matlab hai divine language. It is free from any defect, any error. और उसको नहीं पढ़ाया जाता है, उसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं, सब माइथोलॉजी है, इसको हटा देंगे। और जैसे जैसे साइंस एडवांस कर रहा है, पता है कि सॉफ्टवेयर, सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिसर्च किया है नासा ने इस साइंस में, और इस पे कार्य चल रहा है अभी। Is it mythology? Mythology is it? Ayurveda. Ayurveda is a science. It's a science. आज भी देखो आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद जो है अंधविश्वास है, ये भी वेदों का अंग है, क्योंकि आज भी लोग यूज कर रहे हैं इसको। इस तरह से एस्ट्रोनॉमी, वैदिक एस्ट्रोनॉमी, वैदिक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर किताब लिखा है रिचर्ड थॉम्पसन ने, उन्होंने रिसर्च किया है कॉस्मोलॉजी और भगवत पुराण, उसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में समझाया है कि कैसे वेदों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कहाँ पे क्या सिचुएटेड है। इसलिए आप देखिए वैदिक कैलेंडर पब्लिश जो होता है, यानी कि वैदिक कैलेंडर, पहले कोई कैलेंडर नहीं होता था या कोई लोगों को पता नहीं था कि किस दिन चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगेगा, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का, जिसको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बोलते हैं, इसका पूरा डिटेल में एक एक सेकेंड टाइम पे बता दिया जाता है वैदिक कैलेंडर किस दिन होने वाला है। आजकल इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट होने के बाद जिन लोगों को इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप डेवलप किए गए हैं, और तब जाके वो बताते हैं कि कब जो है सोलर इक्लिप्स और कब लूनर इक्लिप्स हो गए। उस समय अगर कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं, कुछ नहीं था, तो लोगों को कैसे पता चला है। अब बताया जाए कि आज से 5,000 वर्ष पहले जो कैलकुलेशन किया था, आज भी बिल्कुल करेक्ट आता है, सूर्य ग्रहण चंद्र में बिल्कुल उसी दिन पड़ता है। और जितना उनको सब पता था, वैदिक, अभी आपको इसका प्रिपरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स एंड इंडियन वैदिक कैलेंडर विच वेरी प्रिसाइजली कैलकुलेट द डेट्स ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स है एंड अदर टेक्निकल डिटेल्स। ये सम्राट यंत्र है और जो जंतर मंतर दिल्ली में है, उसकी सवाई मान सिंह ने बनाया था, है ना, सवाई जय सिंह। तो ये जो जंतर मंतर है वहां पे बताया, वहां पे ऐसा बनाया गया स्ट्रक्चर कि सूर्य की जो किरणें हैं उसकी छाया से आप पता करोगे कि टाइम क्या है। तो क्या ये अंधविश्वास है? साइंस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज इंस्ट्रूमेंट, वेल कैलकुलेटेड साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। वैदिक कॉस्मोलॉजी में सूर्य सिद्धांत जो है, ये वैदिक टेक्स्ट है जिसमें डिटेल में बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है कि कहां पे क्या है, जितने प्लैनेट्स है उसके बारे में बताया गया है। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है हेलियोसेंट्रिक डिस्टेंसेज ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि सूर्य से जो ग्रह है उनके कितना डिस्टेंस है उनके बीच में। सूर्य सिद्धांत से बताया गया है कि सूर्य से ग्रहों का डिस्टेंस कितना है। अब बताइए उस समय कैसे मेजर किया डिस्टेंस विदाउट साइंस टेक्नोलॉजी। और इसका देखिए यहां पे तुलना किया गया है, एसएस डिस्टेंस का मतलब है सूर्य सिद्धांत डिस्टेंस, और वे डब्ल्यू डिस्टेंस मतलब अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कैलेंडर, वेस्टर्न कैलकुलेशन, मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन डिस्टेंस क्या है। तो बताया कि मरकरी का जो सूर्य से डिस्टेंस, जो सूर्य सिद्धांत बताया गया है, और वेस्टर्न बताया 0.368 और 0.39। वेनस का 0.725 सूर्य सिद्धांत के अनुसार और मॉडर्न कैलकुलेशन 0.72, मार्स जो है 1.54 मॉडर्न कैलकुलेशन 1.52, जुपिटर 5.07 5.20, सैटर्न 9.11 9.05। तो अगर ये अंदाज से किया हुआ है तो मैच कैसे कर रहा है? मैच लॉजिक तो इतना मैच नहीं करेगा ना। तीनों रिचर्ड थॉम्पसन ने अपने किताब में मैंने आपको दिखाया, उसने इसका कैलकुलेशन करके सारा मैच करके दिखाया कि कैसे मैच कर रहा है ये सब। तो वैदिक लिटरेचर से नॉट मैथोलॉजी। और इसके अलावा जो है ना पीरियड दिया हुआ है, कितने देर में चक्कर लगाते हैं सूर्य का। तो देखिए यहाँ पे पीरियड सूर्य सिद्धांत के अनुसार और मॉडर्न कैलकुलेशन के अनुसार दिया हुआ है। मून कितने दिन में चक्कर लगाता है पृथ्वी का, 27.322 डेज। और वेस्टर्न अभी मॉडर्न कैलकुलेशन 27.32166। इस तरह से आप देखिए मरकरी का भी दिया हुआ है सूर्य सिद्धांत में, मरकरी वेनस सन सारी डिटेल में दिया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक विज्ञान है ना, विज्ञान है। और डायमीटर भी दिया हुआ है हर प्लैनेट्स का डायमीटर, अमेजिंग कि उसका डायमीटर कितना है। तो डायमीटर आप जो कैसे मेजर करोगे अगर आपके पास साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है? तो सूर्य सिद्धांत जो लिखा है ये वैदिक टेक्स्ट है जिसमें कि सारा डिटेल में बताया हुआ है सारे प्लैनेट्स के बारे में। तो इसीलिए वेल नोन साइंटिस्ट कार्ल सेगन बताते हैं कि वैदिक कॉस्मोलॉजी इज द ओनली वन इन विच द टाइम स्केल्स कॉरेस्पॉन्ड टू दोज ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी। और किसी टेक्स्ट बुक में और किसी भी टेक्स्ट बुक में चाहे अदर रिलीजन्स का इतना डिटेल नहीं बताया गया है जितना कि वैदिक टेक्स्ट बुक्स में डिटेल बताया गया है। नॉलेज जितना डिटेल नॉलेज है वेदों में उतना डिटेल आपको बाइबिल में या कुरान में नहीं मिलेगा, अदर रिलीजन से इतना डिटेल नहीं दिया गया है ना। वैदिक कॉस्मोलॉजी द कॉस्मो जॉनी विच नो यूरोपियन कंसेप्शन हैज एवर सरपास्ड, नोबेल लॉरिएट काउंट मॉरिस। वैदिक कॉस्मोलॉजी इज मोर एंशिएंट देन दोज ऑफ द ग्रीक्स ऑफ इजिप्शियंस एंड दैट द मूवमेंट्स ऑफ द स्टार्स कैलकुलेट 4500 एगो डज नॉट डिफर बाय ए मिनट फ्रॉम द टेबल्स ऑफ टुडे। इस तरह से बताते हैं वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि हम इतना डिटेल में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, इससे सफिशियंट है, इससे प्रूफ होता है जो वैदिक नॉलेज है इट्स नॉट इन माय थॉट, बल्कि इसको बड़ा ही सिस्टमेटिकली स्ट्रेटजी द्वारा कॉन्स्पिरेसी के द्वारा इसको डाला गया लोगों के दिमाग में कि ये जो वैदिक ज्ञान है। और आज का जो युवा पीढ़ी है वो क्या करते हैं, वो वेद पढ़ते नहीं है, भगवद गीता पढ़ेंगे नहीं, और जो है वो बोलते हैं नहीं ये सब अंधविश्वास। आप पढ़ो तो पहले आप जानते हो उसमें क्या लिखा है, पहले उसको जानो पढ़ो समझो फिर आपको अधिकार है बोलने का कि अंधविश्वास है कि क्या है। आप पढ़ते नहीं हो, आपने देखा नहीं है उसके बारे में, सुना नहीं है, उसको सीखा नहीं है। तो वही बात होगी कि आपको कोई आप कॉलेज में गए आपको बोला किसी ने कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको बताया, बोले ये अंधविश्वास है। आप उसको पढ़ो पहले, उसको समझो, टीचर के पास जाओ सीखो, तब आप टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा ठीक से, तब आपको समझ जाएगा ना। पहली बार में तो सब अंधविश्वास ही लगता है। तो इसलिए ये जो ज्ञान वेदों के बारे में मैंने आपको बताया कैसे बड़ी चाल चलाकी से और बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से ये प्लान करके लोगों के दिमाग को चेंज किया गया, और आज देखिए कि बिल्कुल सब सक्सेसफुल हो गए। आजकल बाहर से बिल्कुल सब कोई अंतर नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है वैदिक लिटरेचर्स को, कोई हिंदू हार्डली कोई हिंदू है जो कि वैदिक लिटरेचर पढ़ता है, अगर पढ़ लिया भी तो गलती से कभी कभी घर पर गया तो पलट लिया। क्यों? क्योंकि ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दिया। भारत आजादी के बाद भी आजाद नहीं हुआ, बाहर से देखने से केवल लगता है ना झंडा केवल दिखता है, ना? लेकिन कोई भी जो भारतीय चीजें जो है उसको फॉलो नहीं हो रहा है। आपका लैंग्वेज चेंज हो गया है, आपका ड्रेस कोड चेंज हो गया है, आप ड्रेस जो पहनते हो ये ड्रेस जो है, आज जो कोई भी व्यक्ति अगर भारत का एंशिएंट ड्रेस पहने अपने कल्चर का, तो उसको लोग सोचते हैं कि ये पागल है। मतलब अपने ही देश में अपने ही कल्चर को अगर कोई फॉलो करता है तो उसको हम लोग नीच मानते हैं। कैसे हुआ ये? हर व्यक्ति अपने कल्चर को महान बनाने का कोशिश करता है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं? अगर हम जैसे कोई धोती कुर्ता पहन के अगर आपके कॉलेज में चला जाए तो क्या होगा बताइए आज? क्यों आप बताओ, क्यों ऐसा है बताओ? महात्मा गांधी या फिर जिसको आप राष्ट्रपिता बनते तो क्या पहनते थे? तो उस तरह से क्या ये सब पागल थे? सब अंधविश्वासी थे ये लोग? तो हम जो है अपने ही संस्कृति में रह रहे हैं, अपने ही देश में रह रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में अगर कोई अपने कल्चर को, कोई हिंदी बोलता है उसको लोग हंसते हैं, लेकिन आज आपको मैं शुद्ध हिंदू बोलने लगूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो कि आपको नहीं समझ में आए। आप लोगों ने कितने लोगों ने हिंदी किया है, पढ़ाई की है, लेकिन जो हिंदी आपने पढ़ाई की है वो बड़ा हाई। आप लोग कितने लोग संधि और जो है समाज का ज्ञान है आप लोगों को? समाज कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? तो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी रह गई है। अगर है भी तो कुछ दिनों के बाद नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। आजकल थोड़ा क्योंकि पहले से आप लोग पढ़े हुए, लेकिन अब देखना नया जो एजुकेशन सिस्टम लागू हो रहा है उसमें वो भी नहीं मिलेगा। सर बात को हमें मतलब है कि धीरे धीरे डिप्लीट हो जाए। तो हिंदी नहीं तो संस्कृत की तो बात ही छोड़ दी। मैं संस्कृत में बोलूँ तो कितने लोगों को समझ में आएगा? बहुत कम, बहुत कम समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो है हम दूर होते जा रहे हैं, ठीक है नहीं? तो इसका कारण यही है कि हम जो है वो बिल्कुल भूल रहे हैं संस्कृति को, और इसका दुष्परिणाम भी होता है। इसका दुष्परिणाम भी आप देखो, पूरा विश्व जो है वो ये जो संस्कृत जो ज्ञान है या वैदिक ज्ञान है इससे दूर जाता है। इसका परिणाम आप जानते हैं कि कितना समाज में जो है वो जो अन्याय और अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ रहा है। कि लोग जब 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 जो विस्टम से दूर जाएंगे तब आप देखना समाज में जो है अशांति और दुख का वातावरण।
सर हम इन वेदिक्स को बिना पढ़े भी तो उसका सिविलाइज्ड और रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो पढ़ के ही सर हम डिसिप्लिन रहेंगे या सिविलाइज रहेंगे।
नहीं, आप नहीं हो सकते सिविलाइज। इसका प्रमाण है, आप देखो पिछले 500 वर्षों से जो है हम प्रयास कर रहे हैं वैदिक नॉलेज के बिना सिविलाइज होने का, और आपका परिणाम आपको दिख रहा है आज पूरे विश्व में। जहां भी इस नॉलेज के बिना प्रयास किया गया सुख और शांति होने का, हाथ में अशांति ही लगी है। जब तक आप जो है इसको, क्योंकि हमारा जो प्रयास है, जो हम प्रयास करते हैं, ये प्रयास जो है वो इसमें दोष है। आप कोई भी सिस्टम डेवलप कर लो, क्योंकि हमारे अंदर दोष है इसलिए उस सिस्टम के अंदर भी दोष आएगा।
तो थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है कि हम क्या थिंक करते हैं।
आपकी थिंकिंग कहाँ से बनती है? आपकी थिंकिंग कहाँ से बनती है?
एजुकेशन और सोसाइटी।
यस, तो आपको जो सोचवाया जाएगा वही आप सोचोगे ना। आजकल के बच्चों को जन्म से ही सोचवाया जाता है ना? तो जो सोचवाया जाता है वही सोचते हैं। तो आपकी अपनी थिंकिंग है ही नहीं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जस्ट लाइक आप जो है, अगर आपको जो अगर कॉलेज में नहीं लाया जाता कि आपने आप जो है पढ़ाई कर लेते
नहीं सर, लेकिन कॉलेज में
आप ये बोल सकते हो कि कॉलेज के बिना भी तो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको टीचर्स की आवश्यकता मिले, गाइडेंस की आवश्यकता तो है ना। बिना गाइडेंस के, बिना टीचिंग के, बिना टेक्स्ट बुक के, हाउ विल यू अंडरस्टैंड। डिसीजन भी आप सोचते हो, लेकिन डिसीजन भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पे आप लेते हो ना।
सर नॉलेज आधार के ऊपर थिंक करते हैं तभी लेते हैं।
नॉलेज के आधार पर जितना आपको नॉलेज है उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लोगे ना।
सर लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जो एजुकेशन ले वो वेदास की हो, हम कोई भी एजुकेशन ले हम अच्छी तरह अगर कर रहे हैं तो वो बेटर है सर।
बट हाउ विल यू डिसाइड यू आर डूइंग नाइसली, कैसे डिसाइड करेंगे आप अच्छी तरह कर रहे हैं?
बुरा नहीं कर रहे हैं मतलब हम अच्छा कर रहे हैं?
नहीं, कैसे जानते हो कि आप बुरे? कोई व्यक्ति हर व्यक्ति यही सोचता है मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, अगर सोचता कि मैं बुरा कर रहा हूँ तो बुरा करता क्यों? अगर व्यक्ति सोचता कि मैं बुरा कर रहा हूँ तो बुरा क्यों करता है? हर व्यक्ति जो है कोई नहीं ये नहीं सोचता कि मैं बुरा कर रहा हूँ, सब सोच किसी तरह किसी तरह जस्टिफाई कर देते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है अपने ज्ञान के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार। बुरा क्या है और अच्छा क्या है ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि मान लीजिए अगर बुरा अच्छा की जहां तक बात है तो चोर चोर के लिए पुलिस बुरी है और पुलिस के लिए चोर बुरा है
और ब्रिटिश के लिए
तो सर दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं वो जितने वेदास का अध्ययन जो नहीं करते हैं वो सब बुरे कर रहे हैं।
ये तो समझने की बात है, ये तो आपको समझने की बात है। आप जब उसको समझोगे तभी आप इसको समझ सकते हो ना। वेदों को पहले आप देखोगे कि वेदों में क्या है, वेद का स्टैंडर्ड देखो तब आप तुलना कर सकते हो। आपको वेदों का स्टैंडर्ड पता नहीं है कि वेदों में जिसको अच्छा बताएगा वो अच्छाई का लेवल क्या है। हम सोचते हैं ना दूसरों को बुरा मत बोलो तो हम अच्छे हो गए, ये अच्छाई का बहुत लो लेवल है, इससे बहुत ऊंचा है अच्छाई। हम सोचते यही अच्छाई है बस, इसके अलावा जीवन के और भी कई फेस हैं जो कि हमें पता ही नहीं है। अभी आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो कभी जानता ही नहीं था, क्योंकि वेद में बताया गया है डिटेल। जैसे कि आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल। आज जो है योगा और मेडिटेशन का यूज करके और ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो रही हैं जो कि मॉडर्न साइंस मेडिकल साइंस में उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप वेदों को नहीं पढ़ते तो कहां से ये ज्ञान प्राप्त होता है बताओ? अपने तरीके से कर पाते ये नहीं कर पाते आप। ये एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और स्पिरिचुअल डायमेंशन तो बिल्कुल अनजाना है, आप समझ ही नहीं सकते जब तक कि आप वेदों के, क्योंकि ये बियॉन्ड योर थिंकिंग भी है। स्पिरिचुअल डायमेंशन जो वेदों में बताया गया ये तो आपको सोचने से भी परे है, तो उसको आप कैसे कंसिडर करोगे अपने तरीके से? तो लेवल ऑफ मोरालिटी में भी लेवल्स है ना। तो जैसे कि आप शरीर मनुष्य ही हैं, लेकिन मनुष्य में तीन लेवल, एनिमल कॉन्शसनेस इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन कॉन्शसनेस इन ह्यूमन बॉडी एंड डिवाइन कॉन्शसनेस इन ह्यूमन बॉडी। शरीर एक ही है मनुष्य का, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्शसनेस डिफरेंट है। तो विदाउट वैदिक नॉलेज यू कैन मैक्सिमम कम टू द ह्यूमन कॉन्शसनेस, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। और डिवाइन कॉन्शसनेस जो है उस पर आप तभी आओगे जब आपको डिवाइन नॉलेज मिलेगी, and that divine knowledge is there in the Vedic texts, Bhagavad Gita. Just like I'll give simple example, the science of reincarnation. आप अपने तरीके से कैसे इसको समझोगे? You can't understand. आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, इसको आप अपने तरीके से कैसे समझोगे?
सोसाइटी में सर इतनी एजुकेशन की जरूरत है कि कोई भी आदमी किसी को हार्म ना पहुंचाए और अपनी लाइफ
हार्म ना पहुंचाए, क्यों ना पहुंचाए? आप सुनो इस बात को, अब यही बता रहा हूँ ना कि हार्म ना पहुंचाए, क्यों नहीं पहुंचाए?
क्योंकि सर हम शरीर नहीं
अगर आपको हार्म को पहुंचाने से मुझे सुख मिल रहा है तो क्यों नहीं पहुंचाऊंगा? इसको समझना पड़ेगा ना
सर।
आप आपस में बात मत करो। हरे कृष्ण प्लीज डू नॉट टॉक, क्योंकि जब एक प्रश्न पूछा गया है तो उसका उत्तर देने दो, नहीं तो प्रश्न प्रश्न ही रह जाएगा। तो एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो आप सुनो उसको ध्यान से, क्या उत्तर है उसका, क्या प्रश्न था, फिर से पूछिए।
सर तो हमें दूसरे को नुकसान पहुंचाने में कैसे मिलेगी?
यस, अभी आपको उदाहरण देता हूं। करप्शन जो व्यक्ति करता है, वो करप्शन करता है जब हजारों लाखों रुपए उसके अकाउंट में जाते हैं तो उसको कैसे सुख मिलता है? एक आदमी बोले, दो आदमी बोलेगा तो कोई नहीं समझ में आएगा। आप बताइए क्या बोले?
वो इसलिए करता है कि उसे उस प्रकार की एजुकेशन नहीं मिली है और उस प्रकार
क्या बात कर रहे हैं आप? पता है करप्शन कौन करता है? मोस्ट बात मत करो, आप देखो आपस में मत बोलिए प्लीज। सुनिए मेरी बात, आप पूरा नहीं सुन रहे हो। एजुकेशन जो है वो मोस्ट ऑफ द करप्शन जो होते हैं वो मोस्ट एजुकेटेड लोग ही करते हैं।
बोलो सर, थिंकिंग लेवल में एजुकेटेड नहीं।
यस, वही बता रहा हूँ ना, इसीलिए उस थिंकिंग लेवल के लिए वैदिक नॉलेज की आवश्यकता है।
सर
व्यक्ति जो है, कहते हैं कि हर व्यक्ति जो आईएएस ऑफिसर बनने जाता है, सुनिए ध्यान से, सुनेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, वो शुरू में ही सोचता है मैं देश की सेवा करूंगा, मैं करप्शन को उखाड़ दूंगा। उसके बाद जब आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसके पास एक व्यक्ति आता है, बोलता है आप इस पे साइन कर दो आपको 5 लाख रुपए दूंगा। वो बोलता है नहीं, मैं देश को सुधारने आया हूं। वो बोलता है 10 लाख, पागल हो गए हो, 15 लाख। अब वो कुछ नहीं बोलता सर, 20 लाख सोचो मन, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। अच्छा ठीक है, क्या करना है? सिग्नेचर करना है, एक बस सिग्नेचर ही करना है। अच्छा ठीक है, कहते व्यक्ति ईमानदार स्ट्रांग कैरेक्टर डेवलप करना इतना आसान नहीं है। माय डियर फ्रेंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिग बिग पीपुल हैव गॉन अवे बाय द पावर ऑफ वेल्थ एंड पावर ऑफ माइंड। इट्स नॉट सो इजी टू टॉक, बट वेन यू आर इन दैट कंडीशन, जब आप उस कंडीशन में जाओगे तब आपको समझ आएगा। इतने लोग जो इतने लीडर्स हैं, क्या सब शुरू से ही करप्ट थे? जब उस कंडीशन में पड़ोगे तो समझ में आएगा क्या कैरेक्टर चाहिए, किस कैरेक्टर की आवश्यकता है। इसलिए स्ट्रांग ट्रेनिंग, स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना। डीप सैलो वैल्यूज नहीं चलेगा, ज्यादा देर नहीं चलेगा, जैसे ही थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा बढ़ जाएंगे। स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के लिए आपको स्ट्रांग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आपको क्या पता है कि उनको नहीं पता है कि गलत है ये करप्शन, जो करप्शन करते हैं? या ध्यान दो, सबको पता है इसका क्या परिणाम होगा, ये भी पता है, सब पता है, लेकिन फिर भी क्यों करते हैं? क्योंकि लैक ऑफ डीप डिटर्मिनेशन। जब वो प्रभाव आता है तो जब जोर आता है, जब बहाव आएगा, जब लोभ लालच का प्रभाव आता है, क्योंकि लैक ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो डिवाइन स्ट्रेंथ आएगा, जैसे कि जानवर को देखिए आप, जानवर मनुष्य में ही अंतर है। जानवर अगर एक चपाती रहेगा तो 4 कुत्ते आपस में लड़ मरेंगे, लेकिन मनुष्य सोचता है नहीं, उसको ले रहे हैं, बहुत ज्यादा भूखी है, और वो इसको और बढ़ा सकता है अपने लेवल को, अगर वो प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्पिरिचुअल वैल्यूज को डेवलप करे। तो इसके लिए ये अंतर है मनुष्य के और जानवर के। तो इसलिए आप जो सोचो कि मैं अच्छा करूंगा, वो अच्छा करना जो है वो सभी यही सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो कंडीशन आता है, सिचुएशन क्रिएट होता है, वो अच्छाई कहते हैं संसार व्यक्ति ईमानदार तभी तक है जब तक उसको बेईमानी का मौका नहीं मिलता। बहुत कम ऐसे लोग हैं, आप बताओ कितने ऐसे लोग हैं पूरे देश में जो कि हर स्थिति में ऑनेस्टी के लिए तैयार हैं? कितने लोग? बहुत कम। क्यों?
हमें नहीं पता है,
नहीं बहुत कम है, सरकार परेशान है, आपको पता रहने से क्या है भाई, पूरी सरकार परेशान है इसके चक्कर में आप बोल रहे हो, हमें क्या पता नहीं। क्या मूर्ख है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने बनाया है वैल्यू एजुकेशन सेल, सेपरेट सेल बनाया है इसके ऊपर, मॉडर्न युवा के अंदर जो है बहुत डिग्रेडेशन हो रहा है, गवर्नमेंट इज वेरी एंशियस अबाउट दैट। आपको नहीं पता है तो आप जानिए इसको, समझिए, इसलिए नहीं पता है तो बहुत बड़ा अच्छा कार्य नहीं है, उसको जानना है, खुश मत हो मुझे नहीं पता है, जानिए समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है और आपके जीवन में भी क्या होने वाला है, इसको भी जानना जरूरी है। तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि देखो ये जो इतना आसान नहीं, इसलिए स्ट्रांग कैरेक्टर जो भी व्यक्ति हुआ है, द पीपल हु हैव द स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दे वर स्पिरिचुअलिस्ट पीपल। महात्मा गांधी हैड ए स्ट्रांग कैरेक्टर, व्हाट वाज हिज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, क्या पढ़ते थे महात्मा गांधी? आप देखो जीसस क्राइस्ट, ही ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल, कहां से स्ट्रेंथ था? डिवाइन स्ट्रेंथ। तो इसलिए एंड दिस पीपल दे नेवर डेविएटेड, कितने कितने उनके ऊपर एलोरमेंट साय माया गया, डिडंट डेविएट। जीसस क्राइस्ट होल लाइफ देखिए, गॉट लॉट ऑफ वेल्थ, लाइक आवर इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, ही वेंट टू अमेरिका विथ 40 रुपीज एंड विद इन 10 ईयर्स ही गॉट करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज, बट ही डिड नॉट इवन सिंगल पेनी ऑन हिज नेम। दिस पीपल कैरेक्टर, व्हाट वाज़ द सोर्स? इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड कैरेक्टर विच इज नॉट सो इजी टू डेवलप। आपको थोड़ा सा एल्यूमेंट मिलेगा और आप नहीं चाहते हुए बहुत, सबसे प्रॉब्लम तो ये है, कई बार आप नहीं चाहते हो फिर भी आपको करना पड़ता, यू कांट स्टॉप यूर सेल्फ। सो उस सिचुएशन में आपको स्ट्रांग स्पिरिचुअल डिटर्मिनेशन चाहिए, वो आएगा स्ट्रेंथ जब आप वेरी स्ट्रांगली बैक्ड अप बाय द विल पावर ऑफ गॉड। वो बाद में जैसे आप प्रैक्टिस करोगे स्पेशलिटी, व्हेन यू स्टडी मोर देन यू कैन अंडरस्टैंड डिटेल कैसे होता है।
सर, जो हमें नुकसान पहुंचाता है उसे जब तक हम नहीं नुकसान पहुंचाते हमें क्यों खुशी नहीं मिलती है?
आपको खुशी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आप जो है खुशी क्या होता है उसको समझते ही नहीं। सबसे पहले ये बात जानो कि खुशी है क्या, ये जानवरों की खुशी है, उसने मुझे मारा तो मैं उसे मार दिया, ये जानवरों की खुशी। खुशी इसमें है कि दूसरों का हेल्प करना, दूसरों को प्रेम करना, इसमें जो खुशी है।
सर हेल्प तो करते हैं लेकिन ह्यूमन नेचर ये होती है कि आदमी अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो उसे भी वो नुकसान पहुंचा के मतलब खुश।
आप लोगों के लिए भी रिलेवेंट है, आपस में बात मत कीजिए प्लीज, ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए रिलेवेंट है, ये नहीं ये प्रश्न जो है बाकी सारा क्लास बात करेगा।
सर ये ह्यूमन नेचर होती है कि आदमी अगर दूसरे को परेशान करता है तो वो भी उसको परेशान करेगा, तभी वो खुश होता है।
नहीं,
ये ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं है, एनिमल नेचर है, आप ह्यूमन नेचर पे हो ही नहीं अभी, इसलिए तो आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसलिए बताया एनिमल कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन बॉडी, द्विपाद पशु दो पैर वाला पशु, बस इतना ही अंतर है। आप क्या समझते हो कि आप केवल मनुष्य शरीर मिल गया था मनुष्य हो गए? मनुष्य बनने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ह्यूमन वैल्यूज पहले समझना पड़ेगा, मनुष्य बनता कैसे है व्यक्ति, शरीर प्राप्त करने से तो व्यक्ति, अब आप बच्चे हो तो उस समय आप मनुष्य हो, उस समय आप तो कई बच्चे जो है खाते हैं अपना ही मल खाते हैं, अपना ही मल उठा के खाते हैं, तो क्या वो मनुष्य है? ज्ञान के आधार पे, नॉलेज के आधार पे और नॉलेज को अपने जीवन को बनाने के आधार पे व्यक्ति मनुष्य बनता है, जन्म से सब पशु है। तो इन वैल्यूज को जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो समझेंगे नहीं कि मनुष्य क्या है, किन वैल्यूज के आधार पे। जैसे यही हो गया कि ब्राह्मण के घर में जन्म ले तो क्या वो ब्राह्मण हो गया? नहीं, जब तक उसके अंदर क्वालिटीज नहीं डेवलप होगी, जो ब्राह्मण का क्वालिटीज है, सत्य शौच क्षमा दया स्वाध्याय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य एंड नॉन वायलेंस, ये जो क्वालिटी जब तक डेवलप नहीं होती है यू कांट बिकम ब्राह्मण। तो उसी तरह जब तक मनुष्य की क्वालिटी आपके अंदर नहीं आती है आप मनुष्य नहीं कहे जा सकते।
मनुष्य में तो क्रोध भी नहीं आना चाहिए,
मनुष्य के अंदर क्रोध आना चाहिए। बिना क्रोध के आप कह मान लो कि हनुमान जी बिना क्रोध के लंका को कैसे जलाते। क्रोध का उद्देश्य क्या है उसके डिपेंड करता है। आप जो है अभी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को मारा था, अभी जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अभी रिसेंटली, हाँ क्या अटैक हुआ था ना, उन्होंने भारत की सीमा में आ गए थे, कारगिल हुआ, तो उसको क्या मिला, परमवीर चक्र मिला। तो उसमें तो इतने लोगों को मारा, क्या गुस्सा नहीं हुआ होगा, बिना गुस्सा के मार दिया, हंसते हुए आइए आपको मार दिया। तो क्रोध गलत नहीं है, लेकिन क्रोध गलत कार्य के लिए क्रोध करना गलत है। अच्छे कार्य के लिए क्रोध हर चीज का उपयोग है, और मिसयूज भी है और राइट यूज भी है। तो हम मनुष्य जो है उसको अपने क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए, और जब जरूरत हो तभी उसको क्रोध करना चाहिए। इसको कहते हैं क्रोध को आप समाप्त नहीं कर सकते आर्टिफिशियल, लेकिन क्रोध को जैसे अभी आप लोग बदमाशी कर रहे थे तो आपको ऊपर भाई क्रोध करना है, लेकिन क्रोध को कंट्रोल करके करना था, ये नहीं कि मुझे ब्लड हार्ट अटैक हो गया और क्रोध के बाद में फिर क्लास कंटिन्यू किया और अभी क्लास दे नहीं रहा। तो क्रोध करना जरूरी है अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि गलत कार्यों के लिए क्रोध करो, उसको कंट्रोल करना है। दूसरे हर चीज आपको जो अर्जुन जो युद्ध कर रहे थे बिना क्रोध के मार रहे हैं,
नहीं सर हम ये कह रहे हैं कि जो अगर कोई नुकसान पहुंचाता तो उसे हम नुकसान नहीं, तो
नहीं हुआ उसको आप नुकसान
मार दे तो भी तो हुआ
उसका तरीका है। देखो वैसे ये डिफरेंट टॉपिक है, हम लोग पर्सनल डिस्कस कर सकते हैं इसको कि अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए पुलिस है कि नहीं, उसके लिए जो है प्रॉपर सिस्टम बनाएगा। हर व्यक्ति जो है अपने तरीके से निर्णय लेने लगेगा तो हो गया फिर समाज चला। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस इज ऑल्सो प्रिंसिपल, ठीक है। तो एनी वन हैज एनी क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। और कल कल जो है हमारा टॉपिक होगा उसके ऊपर है कि अभी एक पार्ट को आज मैंने बताया कि वैदिक आज कल क्या कंक्लूजन, हाथ उठा के बोलेगा आप बोलिएगा, मैं जिसको बोलूंगा वही बोलेगा, आप केवल हाथ उठाइएगा, ठीक है, जिसको बोलना है मैं जिसको बोलूंगा वही बोलेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई प्रश्न पूछता हूँ तो आप वो तुरंत सब दस आदमी बोलने लगते हैं, इट ऑल्सो नॉट ह्यूमन सिविलाइजेशन। हर चीज का रूल, ह्यूमन और एनिमल में अंतर क्या है, एनिमल डजंट हैव एनी रूल रेगुलेशन, ह्यूमन लाइफ सभ्यता का मतलब इज प्रॉपर रूल रेगुलेशन, कैसे एक साथ चले। तो उसी के लिए रूल रेगुलेशन के बिना, विदाउट डिसिप्लिन विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन ह्यूमन बींग लाइक एनिमल। तो इसलिए रूल रेगुलेशन आप मनुष्य जानवरों के जीवन में रूल रेगुलेशन नहीं मिलता है। हम देखा कोई जो कुत्ता रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, तो ह्यूमन बींग रूल रेगुलेशन आर फॉर ह्यूमन बींग। अब कई लोग अरे रूल रेगुलेशन बहुत है, रूल रेगुलेशन नहीं तो क्या इसमें गलत क्या है, दैट मेक्स अस ह्यूमन। तो इसलिए ये रूल रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है ना। तो आप लोग हाथ उठाइएगा जो अगर किसी को बोलने का है तो अच्छा आपको बोला जाएगा, इसका पर्पस है, क्योंकि अगर 10 आदमी बोलेगा तो कोई नहीं समझ पाएगा, तो हाथ उठाएंगे ये सीखना है, ये सब एटिकेट्स होते हैं हर चीज के। तो हाथ उठाओगे तो मैं बोलूंगा इनको बोलेंगे, ये बोलेंगे तो आप सब सुनूंगा, फिर उसके बाद दूसरे को बोलेंगे। तो आप मुझसे बताइएगा कि आज के टॉपिक में हमने उसका क्या मेन थीम क्या था, कौन बताएंगे।
जो बनाकर लोगों के सामने जो पेश करते हैं वो मुझे जाना।
और कौन बताएंगे?
ये वास्तव में वो वेद है, मतलब वो अंधविश्वास ठीक है।
हाँ बहुत अच्छा, ये मैं डायरेक्टली आपने बताया, दिस इज व्हाट मैं चाहता था, यही चाहता था डायरेक्टली क्या आपने डिस्कस। वास्तव में जो वेद साथ जो अंधविश्वास नहीं है, लेकिन बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली इसको अंधविश्वास बना। और कौन? आप बताइए आपका नाम।
अंग्रेजों जो थे उन्होंने बताया हमारे देश में हमारे कल्चर को पढ़ाया कर दिया हमारे लोगों के बीच में। उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा जो कल्चर है वो झूठा है, हमारा जो कल्चर है वो सच्चा है। और इसी ज्ञान के से उन्होंने हम पर और हमारे मेंटेलिटी पर सर्च
किया। आप देखिए अब नाउ दे आर रियलाइजिंग अमेरिका में और यूरोप में नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट इंडिया का ज्ञान जो है सबसे अच्छा। अब इसीलिए आप देखो कि योगा मेडिटेशन सब कर रहे हैं,
में भी सर वो सब भाग लेते हैं।
तो आप जगह उस समय उनको लगता था कि नहीं ये लोग लो है, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं ठीक से, उन्होंने समझा नहीं। लेकिन अब जो है उनको समझ में आ रहा है कि उनकी सभ्यता में कहीं कोई बहुत बड़ा दोष है जिस तरीके से वो जी रहे हैं। बहुत अच्छा। और कौन हाथ उठाए थे और कौन बताना चाहेंगे आज के इस टॉपिक में क्या डिस्कस किया? बताइए आप बताएंगे कुछ बहुत सीखा आपने बहुत
कमेंट
उसको जानना है उसमें समझना है, हो सकता है उसके ऊपर इम्पोर्टेंट उसमें इम्पोर्टेंट चीज हो जो हमारे लिए यूजफुल हो। और खास तौर पर वेदाज के बारे में कमेंट नहीं करते, क्यों? क्योंकि वेदाज यहाँ ऐसी चीजें जो कि बड़े बड़े आचार्यों ने बनाए हैं और उनको अपने जीवन में प्रैक्टिस किया है। वेदाज जो ऐसे हैं जिन्होंने कि बड़े बड़े पर्सनालिटी महापुरुषों को प्रकट किया है, तो इसलिए इन पे कमेंट करने से पहले हमें सोचना चाहिए 10 बार। एक तो हम कुछ जानते नहीं उसके बारे में और हम तुरंत बोल देते हैं जितने आचार्य थे रामानुजाचार्य माधवाचार्य इतने बड़े बड़े पंडित थे स्कॉलर शंकराचार्य 12 साल की उम्र में समस्त वेदों को उन्होंने अंडरस्ट कर लिया। 12 साल की उम्र क्या वो मूर्ख थे? हम बोलते तुरंत फटाक से बोल देते ज्ञान ही नहीं पढ़ा ही नहीं कुछ, और सारे आचार्य इतने महान महान जो है वो व्यक्तियों को हम तुरंत एक क्षण बोल देते सब मूर्ख थे और हम बुद्धिमान हैं। इसलिए वेदों के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट है आपने, वेदों के बारे में अगर कुछ कमेंट करने पर मुझे उसको समझना है कि आचार्य क्या थे, क्या देना चाहते थे समाज को। बोलिए बताएंगे तो अच्छा रहेगा ना, जब क्या सीखा आपको बताना चाहिए, इससे आपको और फायदा क्या होगा कि आपका जब बताओगे ना तो आपका खुद ही पर्सनालिटी डेवलप होगा, एक्सप्रेस करने का जो ये जो है ना भाव सीखना चाहिए, कैसे एक्सप्रेस करना है आपने बताइए क्या सीखा 1.5 घंटे।
वेदांत में बहुत ही डिटेल में सब साइंटिफिक वो बहुत ही अच्छे थे, जिसे अंग्रेजों ने मतलब हमारे नॉलेज को बंद करने के लिए उसे ब्रेक करने के लिए ही अपने रूल और जो भी
सिस्टम
थे उसको बनाया थे ताकि वो ब्रेक हो
जाए। होता क्या चाहिए ताकि दोनों को देखिए वैदिक को कंटिन्यू रखना था और साथ ही साथ इसको भी अपना मॉडर्न जो नॉलेज इसको भी लगाना था, दोनों को रहने देना चाहिए था। तो ये आइडियल सिस्टम कि वैदिक नॉलेज को भी जैसे रिसर्च आज भी हो रहे हैं तो आज जो है उसी कॉलेज में आयुर्वेद के ऊपर भी रिसर्च होना चाहिए और मॉडर्न एलोपैथी के ऊपर भी रिसर्च होना चाहिए, यानी कि आयुर्वेद को पूरा साइड नहीं करना। तो उन्होंने गलती क्या किया उन्होंने कि इंडियन सिस्टम को पूरा साइड नहीं करना,
अभी भी तो साइड लाइन ही है,
अभी भी है, अभी भी मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ ना, जो पहले से चलता रहा तो वही चलता रहा है। और कोई बताइए कॉन्स्पिरेसी बाई
रिलीजियस सारे धर्म बराबर कोई अंधविश्वास
नो रिलीजियन यहाँ तक क्रिश्चियनिटी इस्लाम कोई धर्म में अंधविश्वास नहीं है। नहीं रिलीजन व्यक्ति नहीं इसको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पहले आपको रिलीजन है क्या पहले जानना चाहिए, रिलीजन के बारे में बात करना चाहिए। आप बताइए रिलीजन क्या है?
रिलीजन होता ही नहीं वैसे,
नहीं पहले रिलीजियन है क्या ये बताओ ना, फिर बता डिस्कस करके होता है कि नहीं। नहीं पहले ये बताइए, जब आप बोलते जैसे आपका नाम क्या है?
जमुना शंकर।
तो मैं बोलूंगा जमुना शंकर है ही नहीं, पहले जानना पड़ेगा ना कि जमुना शंकर कौन है, फिर बोलूंगा है कि नहीं।
भगवान है
जो आप बता रहे हैं कि भगवान ने बनाया जरूर। हाँ सर, तो नहीं एक मिनट डिस्कस करेंगे, एक व्यक्ति से डिस्कस करें। हाँ इसीलिए आप शुरू, आप शुरू से थे यहाँ पे, तो शुरू में मैंने जो दूसरा स्लाइड आप उस बात में किया प्लीज जैसे फाइव मिनट्स में आप शुरू में अगर रहते तो आपको आपने देखा होगा दूसरा स्लाइड बताया वेदों को दो पार्ट में माना था, श्रुति और स्मृति। श्रुति बताया था मैंने कि उसको ऋषियों नहीं बनाया, स्मृति को ऋषियों ने कंपोज किया, और श्रुति जो है वो रिवील्ड है, रिवील्ड नॉलेज। सुने तो हर चीज को ऋषियों ने नहीं लिखा है, वेदों का एक भाग जो है जो ऋषियों ने वेदों जो श्रुति है जो रिवील्ड है उसको पढ़ा, उसके बाद उससे जो रियलाइजेशन हुआ उसको लिखा, उसको बोलते हैं स्मृति। तो स्मृति जो है वो रियलाइजेशन है बाई सेज, लेकिन श्रुति जो है वो रिविलेशन बाई गॉड है ना। तो वेद जो है उसमें केवल ये नहीं कि सब ऋषियों की रचना है, यही तो हो गया, यही पे अंधविश्वास आया, ये भी उसी का पार्ट है कि वेदों का पढ़ी उसमें पता चलेगा कि क्या लिखा, वेदों में ही लिखा है कि वेद क्या है, ऋषियों के द्वारा रचना नहीं है। आप वेद व्यास से रच यानी कि वेदों को लिखा, वेद व्यास ने वेदों को क्रिएट नहीं किया है, पढ़ेंगे अगर वेदों में तो पता चलेगा, वेद व्यास ने वेदों को सिंपली रिटेन फॉर्म में लिखा है। पहले जो वेद थे वो रिटेन फॉर्म में नहीं थे, वो जो है गुरु शिष्य परंपरा से आते थे, गुरु जो है शिष्य को बोलता था और शिष्य याद करता था और बस इस तरह से आता था। लेकिन जब कलयुग आया तो उसमें क्या हुआ कि देखा कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट हो जाएगी और किसी को याद रहेगा नहीं। अभी एक श्लोक बोल दूं आपको पांच मिनट के बाद आपको याद नहीं होगा, तो मेमोरी जब शॉर्ट होती चली जाएगी तो इसलिए लोग भूल जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया इसको रिकॉर्ड कर दिया, दैट्स ऑल। उन्होंने ये नहीं कि लिखा, उन्होंने वेद व्यास ने वेदों को लिखा नहीं है, उन्होंने जस्ट कंपाइल किया वेदांत, खुद ही लिख रहे थे, उन्होंने कंपाइल किया जो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि से सीखा था। इसलिए अगर आप अभी भी देखो बाइबल भी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट ने लिखा नहीं है बाइबल, उनको जो है वो रिवील हुआ है नॉलेज। तो रिवील नॉलेज में और हमारे द्वारा क्रिएटेड नॉलेज में अंतर क्या है कि रिवील नॉलेज जो होता है वो उसमें डिफेक्ट नहीं होता, और हमारे जो क्रिएटेड नॉलेज होता है वो बार बार चेंज होता है, जैसे कि साइंटिफिक थ्योरी हमने डिस्कस किया था, हम अगर रिसर्च करके कोई चीज लिखते हैं तो बाद में दूसरा व्यक्ति आकर उसको चेंज करता है, लेकिन वैदिक लिटरेचर के साथ ऐसा नहीं। देखो भागवत गीता जो वेद व्यास ने कंपाइल किया था आज तक वही सेम भागवत गीता, यानी कि किसी ने आगे दो श्लोक और जोड़ दिए और किसी ने पांच श्लोक हटा दिए, ऐसा नहीं, वही भागवत गीता है। मतलब कि जो रिवील्ड नॉलेज है वो चेंज नहीं, लेकिन जो आपका द्वारा क्रिएटेड है वो आज आपने क्रिएट किया और कल आप ही उसको फिर चेंज कर सकते, क्योंकि हमारी थिंकिंग रोज बदलती है, तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी परफेक्ट, यू कांट क्रिएट एनीथिंग परफेक्ट। रिलीजियन जो है उसमें लिखा हुआ धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत, वेदव्यास लिखते हैं कि धर्म जो है वो साक्षात भगवान के द्वारा दिया जाता है, ये जो है इसको कोई साधारण व्यक्ति इसको क्रिएट नहीं कर सकता, ये वेद में लिखा हुआ है। वेद में ये नहीं लिखा है कि ये ऋषियों की रचना है। Okay, so thank you very much. Anybody has got any question personally, they can discuss. किसी को अगर पर्सनल कुछ पूछना है तो डिस्कस कर सकते हैं, और कल का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सर।
तो फिर राम का क्यों हरे कृष्णा हरे राम।
भागवत गीता में कहाँ लिखा है ये? अच्छा, नाम के बारे में कुछ नहीं लिखा है, कृष्ण कृष्ण का नाम का मतलब है, इसको समझना है ऐसे कि राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, जैसे कृष्ण राम जो है कृष्ण ही है, लेकिन अलग रोल करने के लिए अलग रूप धारण किया, जैसे कि आप जो है जब आप कॉलेज में जाते तो इस ड्रेस में नहीं जाते, क्यों?
पढ़ने जाते तो हमारा
ड्रेस अलग हो जाता है। इसी तरह से इसका मतलब कॉलेज में आप दूसरे व्यक्ति हो गए और यहाँ पे दूसरे व्यक्ति, तो वही कृष्ण है जो कि नरसिंह का रूप धारण किया, उस समय हमारा शरीर सिंह का राधा मनुष्य का, लेकिन इसका व्यक्ति वही है, लेकिन क्यों ऐसा रूप धारण किया? क्योंकि हीरो ने कश्यपु को वरदान मिला था, तो उसको मारने के लिए कृष्ण रूप में नहीं मार सकते थे, है कृष्ण लेकिन हिरण्य कश्यपु को मारना है तो कृष्ण रूप में नहीं मार सकते, उसको वरदान मिला वैसे, वरदान को फेल नहीं करना है। ब्रह्मा जी को जो भक्त है ना, ब्रह्मा जी जो वरदान देती है उसको काटना नहीं है।
तो सर ये कहा जाता है कि ओम का उच्चारण करना ही सबसे बड़ा होता है, तो क्या ये सभी देव अलग हैं या ये सभी देव एक ही हैं, उनके नाम सिर्फ अलग अलग हैं?
नहीं, इसमें कैटेगरी है ना, तीन प्रकार के तत्व हैं, एक विष्णु तत्व, जीव तत्व और शिव तत्व। तो विष्णु तत्व जितने हैं वो उनको बोला जाता है कि वो भगवत तत्व में आते हैं, और जो देवता लोग हैं, राम देवता नहीं है, भगवान और देवता में अंतर है, देवता एक पोस्ट है जो कि भगवान पोस्ट नहीं है, भगवान जो व्यक्ति है, तो पोस्ट पे तो देवता पोस्ट है इसलिए उस पर तो अलग अलग व्यक्ति बैठते हैं, जैसे इंद्र, इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र जो है एक पोस्ट है, उस पर अभी कोई व्यक्ति बैठेगा उसका टर्न पूरा हो जाएगा तो कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसको बैठेगा, ठीक है ना। जैसे देवता, जैसे जितने देवी 33 करोड़ देवी देवता है ये सब पोस्ट है, इसलिए उनकी पूजा करने के लिए रिकमेंडेशन जो है वो रियली नहीं है, बिगनिंग जिसको मटेरियल डिजायर है तो वो उसकी पूजा, जैसे कि हम जो है बॉस के जो है पूजा करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि बॉस की पूजा करते कुछ नहीं जाए, इसका मतलब ये नहीं कि बॉस भगवान, बॉस की बड़ाई करते हैं, बॉस के जो है रिस्पेक्ट करते हैं, समझ नहीं कि बॉस भगवान होंगे, ये कुछ काम निकालना है इसलिए बॉस के साथ, है ना। तो उसी तरह से देवताओं की पूजा का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि देवता जो हैं वो हमारी भौतिक इच्छाओं को एक कंट्रोलर है, उनको भगवान ने बनाया है, जैसे जल को आप कंट्रोल करो वरुण देव, है ना, और जैसे सूर्य देवता है तो सूर्य को कंट्रोल करते हैं, इंद्र देवता बारिश को कंट्रोल करते हैं, बारिश कंट्रोल करने के एक पोस्ट बनाया गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ये सारे देवता।
तो सर क्यों ऐसा कहा जाता है कि हरिओम मतलब ओम का उच्चारण करना ही सब कुछ है, ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर हम सिर्फ कृष्ण का ही नाम लें या राम का ही नाम लें,
ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। अब देखो शास्त्रों में बताया गया है कि अलग अलग समय के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट नहीं है कि हर समय एक ही सही है ना, तो वेदों में जो है बताया गया है अलग अलग युग के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया, तो इसलिए ओम जो उच्चारण है या ध्यान जिसको बोलते हैं, ध्यान लगाना है ना, ध्यान योग जो है उसको सतयुग में इसको प्रधानता दी गई थी, क्योंकि सतयुग में जो है वो जो है वातावरण बड़ा शुद्ध था, उसमें ध्यान लगाना संभव था और उम्र ज्यादा होती थी, लाइक सतयुग में उम्र लोगों की कितनी होती थी?
सतयुग में तो सर बहुत ज्यादा होती,
एक लाख एवरेज, एक एवरेज उम्र सतयुग में, एवरेज उम्र 1 लाख सर, फिर त्रेता युग में 10 गुना कम हो गया तो 10,000 हो गया, और द्वापर में 1,000, और कलयुग में 100, और कलयुग में भी धीरे धीरे घटेगा, 50 साल तक हो जाएगा कलयुग के एंड आते हैं, तो इस तरह से ये बहरी होता है। उसी तरह से हर युग में अलग अलग मेथड्स बताया गया है भगवान को प्राप्त करने का, कृत यध्यायते विष्णु, त्रितायाम यजते मख, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तन, कृत युग मतलब सतयुग में ध्यायते, ध्यान युग का वर्णन ग्रंथ है। त्रेतायाम जिते मकर, त्रेता युग में यज्ञ, यज्ञ की प्रधानता है, यज्ञ के द्वारा पूजा की जाती है। द्वापरे परिचर्याया, द्वापर युग में डीटी वर्शिप टेम्पल में ग्रैंड वर्शिप ऑफ द लॉर्ड है ना। और कलौ तद हरि कीर्तन, और कलयुग में हरि कीर्तन भगवान के नाम का कीर्तन। तो हर युग के लिए अलग अलग इसको कहते हैं युग धर्म, युग धर्म अलग अलग है। तो अगर आप कलयुग में सतयुग वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको काम ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सिचुएशन अलग है। आप ध्यान करने बैठेंगे, ध्यान होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वातावरण इतना डिस्टर्ब है ना। आपके बगल में कोई माइक चला रहा है, सुटेबल उस समय लोग जाते थे जंगल में जाते थे, आजकल जंगल भी नहीं है, भी तो जा नहीं सकते, इसलिए वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए क्यों मना किया गया? क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है।
इसका मतलब सर ध्यान वो करना ही
चाहिए, ध्यान करने से होगा भी नहीं कि आप करोगे भी नहीं।
तो भी तो सर लोग कहते हैं कि ओम का मतलब दीर्घ उच्चारण करने से ध्यान कंसंट्रेशन बढ़ता है,
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन।
ध्यान ध्यान में जब बैठते हैं तो सर हम ओम का ही तो उच्चारण करते हैं सर।
नहीं तो वही वही
उच्चारण,
तो वही बता रहा हूँ, लेकिन ये इस युग के लिए रिकमेंडेड नहीं। इस युग के लिए भगवान का साक्षात नाम तना कलो तद हरि कीर्तन, हरि नाम
का नाम ही नहीं,
उसी से ओम ओम और ये सब का फायदा उसी में मिल जाएगा।
तो मतलब हम सिर्फ राम का ही नाम ले,
हरे कृष्ण महामंत्र जो
राम का जो
कल कल इसको बताऊंगा
जो भी है इनका वो नाम का
कल मैं करके दिखाऊंगा
आपको, तो उनसे मतलब कंसंट्रेशन हमारा बढ़ेगा।
कल आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में कल के लेक्चर में।
और दूसरी बात सर ये कि गीता हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ जो दिया उसी को पढ़ना सफिशियंट है कि उसका मतलब जो वो संस्कृत उच्चारण दे के मतलब श्लोक दे के दिया गया है उसके साथ पढ़ना चाहिए?
गीता को जो है हमें गीता को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है शुरू में, क्योंकि गीता को समझने के लिए योग्यता होनी चाहिए, हर व्यक्ति गीता को नहीं समझ सकता है ना। जस्ट लास्ट हर व्यक्ति जो है गीता को नहीं समझ सकता, गीता को समझने के लिए योग्यता होनी चाहिए हमारे, तो उसकी योग्यता बताई गई कि गीता कौन पढ़ना चाहिए किसको। तो गीता जो है उसके लिए वो पढ़ सकता है जिसको है और जीवन के जो परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। गीता केवल आपको कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए नहीं दिया गया है, गीता वो बाई प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन इज बाई प्रोडक्ट, सही बात। तो उसका मेन उद्देश्य नहीं है कॉन्सेंट्रेशन, मेन उद्देश्य कृष्ण प्रेम, भगवान से प्रेम जाएगा।
हाँ
हाँ, और जब वो आप कर लोगे कि भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन और ये सब अपने आप रहेगा।
जैसे तो
भगवद गीता जब आप पढ़ते हो तो आपको जो है गाइडेंस गाइडेंस
के साथ पढ़े कि उसे मतलब
जैसे भी आप अर्थ पढ़िए, अर्थ पढ़िए, और जैसे हमारी भगवद गीता आपने ली है यहाँ से तो उसमें तात्पर्य दिया हुआ है
जी,
तो अनुवाद और तात्पर्य दोनों पढ़िए,
दोनों पढ़े श्लोक के साथ पढ़ेंगे श्लोक अच्छा
रहे। हाँ श्लोक भी पढ़िए, क्या दिक्कत है,
समय लगता
है। तो अगर समय लगता है तो मत मत पढ़िए मत, केवल अनुवाद और
पढ़ लेंगे तो ठीक है ना सर। ये मतलब जो माइंड कंट्रोल का है सर, ये ध्यान से क्या कहते हैं पावर, क्या आप माइंड कंसंट्रेशन क्या है आपका टॉपिक सर, उससे सर थोड़ा बता दीजिए।
कंसंट्रेशन के लिए तो आपको उसको मेथड्स है उसको पालन करना पड़ेगा,
उसे बता दीजिए टाइम मैनेजमेंट का।
जैसे जैसे आपका माइंड जो है ना वो समझेगा चीजों को वैसे वैसे काम और पीसफुल होता जाएगा, क्योंकि माइंड को ज्ञान चाहिए, अभी अज्ञानता में इधर उधर जंप कर रहा है, अब ज्ञान हो जाएगा तो गंभीर हो जाएगा, ज्ञान से व्यक्ति गंभीर होता है और अज्ञानता रहेगी तो गंभीरता कभी नहीं जाएगी। पहले चीजों को समझिए, जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना आपको लग सकता होगा केवल मैं बता रहा हूँ, लेकिन सुनते सुनते आप देखोगे कि आप गंभीर, फिर आप जो आपकी जस्ट मेरे साथ डीलिंग करने से आपके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएगी,
टाइम
मैनेजमेंट का बताया कल के बारे में बताया है।
टाइम मैनेजमेंट का
टाइम इसके बाद करूंगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्लासेज जो है ना, ये जो क्लास है उसके बाद।
और ये कॉन्फिडेंस का जो आपका टॉपिक है सर, इसका भी ये तीन टॉपिक
पहले टाइम और स्टडी मैनेजमेंट का एक सेमिनार करेंगे हम लोग, उसके बाद आप लोगों का जो है वो
कॉन्फिडेंस का सर, जो
कॉन्फिडेंस सब पर्सनली आपसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए जो है सब कॉमन इंटरेस्ट जो है उसको डिस्कस करें।
जी सर, ये तीन पॉइंट हमें सही जब आप मतलब हो तो बता दीजिएगा,
पर्सनली मिल सकते हैं, आप आइए कभी, कल मैं दिन भर यहाँ आके डिस्कस करें।
कल शाम को है सर?
शाम में तो क्लास है ना,
तो कब आए?
मैं कल दिन भर रहूंगा, लेकिन शाम में क्लास से पहले भेंट मिली,
क्लास से पहले सर देखते हैं सर,
5 बजे से, 5 बजे से पहले
सर। आप कुछ कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है सर?
10 बजे से लेकर 5 बजे संपर्क ले सकते हैं सुनील प्रभु। आपका नाम?
अविनाश त्रिपाठी है सर।
अविनाश, आते रहिए, समय के साथ सब कुछ दिया जाएगा। आप कौन से ईयर में हैं
सर? हम डिप्लोमा कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर है?
फर्स्ट ईयर है तो बताया जाए, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा आपको, एक दिन में नहीं आएगा, पेशेंस रखिए और आइए पहले सीखिए। जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना, जितना बता रहे हैं अगर आप उसको उतना आप जल्दीबाजी करोगे ना तो फिर नहीं बन सकता,
क्योंकि फिर ये तीन पॉइंट हमें मतलब
हमारा अपना एक शेड्यूल है, क्योंकि हम अनुभव है, हमें पता है लोगों को क्या देना है ना। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो आप लोगों से मुझे पता चल रहा है कि आपको क्या देना है, क्या बताना है, तो उसके अनुसार मैं फॉलो, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, तो वी विल ट्राई टू फॉर्मुलेट सम ऑफ द आइडियाज, एंड सडनली इफ यू कीप कमिंग लाइक दिस देन यू विल सी दैट ऑन दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, देयर इज नो यू विल सी एंड यू कैन गिव योर फीडबैक्स एंड वी विल कंसिडर सडनली, आपकी बातों को हम रखेंगे। तो टाइम एंड स्टडी के ऊपर सेमिनार हम करेंगे आपका मे बी नेक्स्ट वीक, अगर नहीं किया, क्योंकि मैं इधर 2 सप्ताह के लिए मैं जा रहा हूँ बाहर, तो 2 सप्ताह के बाद जब आऊँगा तो उस समय हम लोग करेंगे सेमिनार आपका, है ना। तो ठीक है, आप बताइए आपका नाम? कुलदीप। आपको कैसा लगा प्रेजेंटेशन, कैसा लगा?
अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दिया।
क्या क्वेश्चन पूछा था
आपने? पूछा था कि विषय का वो क्या है सर? ये प्रॉब्लम है कि यदि मतलब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं किसी का जवाब भूलता हूँ, मतलब मेरे शब्द कुछ ज्यादा डबल हो जाते हैं, मतलब कुछ हिलाने के मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके चक्कर में मैं मतलब कहीं से ना रहा है, यहाँ पे भी ज्यादा लोग हों तो मतलब बोलने में कि वो रिपीट ना हो जाए, इसलिए सर टैलेंट का सर मतलब सही उपयोग नहीं कर पा रहा सर।
ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है
सर, मैं किसी से बात भी करूँ यहाँ पे मतलब कभी कभी सब डबल हो जाता है।
मुझे नहीं लगता है अगर कोई प्रॉब्लम
सर, अभी तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, लेकिन
वही बता रहा हूँ
एक्चुअल में हो जाता है।
सही नहीं बस आइडिया भाई जी बैठिए प्रसाद लिए, हम आइडिया बना लेते हैं, गलत आइडिया अपने बारे में सही बात ये बताते हैं, पर हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्यों करते हैं, क्योंकि वैसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पे हमें बार बार हमारे फॉल्ट्स बताए जाते हैं, इसलिए इसका सिंपल उदाहरण है, जैसे मैं आप लोग यहाँ पे इनकरेज कर रहा था बोलने के लिए, तो पहले मैं भी ऐसा ही था जैसे आप बता रहे हैं, है ना, मैं बोल नहीं सकता था सबके सामने, लेकिन देखो कि
जैसे मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन किसी चक्कर में नहीं बोल,
वही बता रहा हूँ, एक परफेक्ट बोल व्यक्ति बोलता वहाँ पे है जहाँ पे इनकरेजमेंट मिलता है, आप समझ बात को, तो वहाँ फ्लुएंटली आप बोलोगे, समझ, लेकिन जहाँ पे पता आ रही है लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर बोलेगा, तो वहाँ पे अगर बोलना चाहोगे तो आप नहीं बोल पाओगे, क्यों, दस लोग हंस देंगे आपके बारे में, ये आजकल की टेंडेंसी है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा ही बात बोलता है तो हाँ ठीक करती है, उसे क्या होता है व्यक्ति जो ये एनिमल लाइफ चल रहा है, जैसे मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं देख रहा था पीपल वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो क्योंकि वो ट्रेनिंग है ऐसा फॉल्ट फाइंडिंग का, तो जैसे आप यहाँ पे आओगे ना आप लोगों को फोरम वैसा डेवलप किया जाएगा, यानी आप एक्सप्रेस करोगे, आपका आपस में डिबेट डिस्कस कराया जाएगा, तो इस देखना कि ये सब चीज़ें अपने आप भाग जाएंगी, आए मुझे तो नहीं दिखता है कि आप अंदर कोई प्रॉब्लम है
सर, मैंने महसूस किया है अपना लोग ही कहते हैं, नहीं
कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम।
ऐसा मैं ट्राई करूंगा वो गलती में
कोई दिक्कत आप जस्ट एक काम आप गलत बोलो या सही जस्ट यू स्पीक और आपने तो अच्छा उत्तर दिया सर बिल्कुल सही बताया आपने
थैंक यू
आते नहीं आपका नाम क्या है
प्रखर मल्होत्र
अभी फर्स्ट ईयर में
यस सर
कौन सा ब्रांच
सर मैकेनिकल
अच्छा लगा आपको प्रोग्राम
यस सर बहुत अच्छा लगा
तो आप लोग आते रहिए
थैंक यू सर
आपका नाम
अंकित
अभी
मुझे तो बताइए एक चीज आप इतने शांत क्यों रखे कैसे रहते हैं मेरी बिल्कुल शांति नहीं पाता बस बस एक चीज है बस शांति नहीं रहती बस आपको मैं पिछली बार जो दिन आया था आज भी बड़े शांत रहते हैं आप मतलब बोलते बहुत अच्छे से
शांति तो आती है जब आध्यात्मिक अब जस्ट हमारे साथ रहिए हमारे साथ रहिए आपके अंदर अपने आप आ जाएगा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का
पिछली बार दो आया था आपके यहाँ कटन का आज भी बस एक बहुत दिन लग रही आप शांत बहुत शांत से रहते हैं शांति टाइप की जिंदगी में कोई टेंशन परेशानी नहीं
हाँ तो आप साथ में रहिए हमारे आते रहेंगे ना तो बेसिकली इसलिए होता है ना कि व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञान चाहिए अज्ञानता के कारण जो है ना हमारा जो है वो जो भी अशांति होती है मेन कारण अज्ञानता है जैसे आपको ज्ञान मिले कि आप कौन हैं है ना जैसे मान लीजिए कि बाहर से आपको बहुत जोर से आवाज आ रही है बाहर से समझ जैसे मान लीजिए आप क्या कह रहे हैं बाहर से बहुत जोर से आवाज ना तो आप तुरंत क्या अशांत हो क्यों आपको लगता है कि बम ब्लास्ट हो गया है कि जब आप बाहर देखते हो बाहर झांकते हो तो पता चला टायर फूटा है तो आपको जब ज्ञान हो जाता है कि क्या हुआ है तो आप के अशांति जो है वो खत्म हो जाती है असल बात तो लगता है अरे बॉक फूट गया कई लोग मर गए जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है उसी तरह हमें लगता है अरे बड़ा लॉस हो गया जब अगर ज्ञान आपको होगा तो समझ में आएगा कि नहीं कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो कि हमें अशांत कर सके
बस यही और
बिल
पावर कैसे बढ़ाएं
बिल पावर भगवान के साथ स्ट्रांग कनेक्शन करोगे तो भगवान की बिल पावर आपके अंदर आएगी
हाउ कैन इंक्रीज
बाय चैंटिंग हरे कृष्ण
बाय
चैंटिंग हरे कृष्ण कल बताऊंगा कल क्लास में आप लोगों को चैंटिंग करवाऊंगा मंत्र मेडिटेशन तो इससे आपको बिल पावर डेवलप होगा है ना
जो आप कहाँ से दिल्ली से
दिल्ली
दिल्ली में कहाँ से
दिल्ली हमारा वहाँ पे सेंटर है मंदिर है ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन मंदिर श्री राधा प्रसाद आप लोग अभी कभी ले चलोगा
मैं आऊंगा भी मतलब
कॉलेज प्रोग्राम्स कॉलेजों का एक महासम्मेलन होने वाला है हमारे दिल्ली में 26 और 27 को तो वहाँ पे 30 कॉलेज से लड़के आ रहे हैं
तो हमें पता कैसे ले जाएगा
IIT और NIT मेन मेन कॉलेज दिल्ली के
तो हमारा मतलब हमारे कॉलेज से
आप लोग को भी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा कल बताऊंगा जो आना चाहे तो रजिस्टर करा सकते हैं
तो उसके कुछ पैसे मतलब
कुछ पैसे जो रहेंगे तो मिनिमम भी रहेंगे आने जाने का सारा देखेंगे देखिए वहाँ पे आप लोग कई लड़कों से मिलेंगे जो कि बहुत ही मेन अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हैं IIT और ये सब इंस्टीट्यूट्स के लड़के हैं जिनसे आपको बड़ा ही सीखने को मिलेगा कि कैसे लड़के कर रहे हैं
एक शांत मतलब बहुत शांत रहे पर वो ही नहीं पा
सकते नहीं नहीं हो जाएगा सब हो जाएगा कैसे होगा शांति आएगी जब आप समझोगे चीजें को तब अभी तक क्योंकि आपको ज्ञान नहीं इसलिए अशांति है जैसे जैसे ज्ञान आएगा जैसे जैसे आप इंट्रैक्ट करोगे लोगों से तो आपको शांति है तो अभी जो आप अभी जो हो उससे ज्यादा परेशान अब आपका सबसे अच्छा क्या है कि आप लोग हमारे टच में आ रहे जस्ट यू कंटिन्यू अगर कंटिन्यू करते रहेंगे आपको सगाई चीजें भी सिखाऊंगा अभी तो उतना पर्सनल टच नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि क्राउड जो है वो ज्यादा उतना फिक्स नहीं यदि क्राउड फिक्स हो जाएगा तो लास्ट में 15-20 लोग बचेंगे नहीं पता है 15-20-25 लोग बचेंगे सब नहीं चाहते तो उनको फिर मैं पर्सनली ट्रेन
कर
सकता
हूँ
कब से सुनते रहेंगे?
छह सेशन चल रहा है ना, दो तीन सेशन और चल रहे हैं, उसमें पता चल रहा है गाइडेंस करेंगे। और अगर आप चाहें तो पर्सनली, आज तो समय नहीं है, कल भी मैं यहाँ हूँ, आप पर्सनली मिल सकते हो।
कल
कल सामने होगा, लेकिन सामने तो क्लास होगा ना, और पर्सनली अगर आप चाहते हैं कुछ गाइडेंस तो आप कल दिन में आ सकते हैं, पाँच बजे से कितने बजे से कितने बजे से कॉलेज होता है?
दस से पाँच,
पूरा दिन भर क्लास होता है,
मतलब बीच में से एक आध लेक्चर वगैरह फ्री हो जाते हैं।
उसी लेक्चर में अगर आपको समय है तो आके मिल लो मुझसे, ठीक है? तो उसमें आपको पढ़ने के लिए गाइडेंस, जिससे कि आप
गुरु जी, मंडे की जगह अगर सैटरडे संडे को हो जाए क्लास, तो
सैटरडे संडे क्या होता है ना, बहुत बिजी सीजन होता है।
संडे क्या है, सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, मंडे को जैसे मैं पांच बजे कॉलेज से आए, फिर यहाँ से जल्दी जल्दी भाग के आए, फिर ऐसा करना।
अभी देखते हैं, अभी करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी हमारा जो उधर से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे करते हैं कुछ ऐसा व्यवस्था, है ना? ठीक है,
ठीक।
आपका नाम क्या बताया?
अंकित। अंकित,
आप फर्स्ट ईयर में?
जी,
कौन सी ब्रांच?
ईईसी
इलेक्ट्रॉनिक्स।
इलेक्ट्रॉनिक्स,
ओके, ठीक।
Thank you.
सैटरडे संडे को लड़के बात नहीं आ सकते आप क्या छुट्टी रहती है ना सैटरडे संडे
संडे को सैटरडे में
लड़के जाते हैं कॉलेज में सैटरडे सैटरडे को भी
सैटरडे संडे संडे को तो अभी बन सकता है संडे को कुछ तरह से फ्री रहते हैं सैटरडे में कुछ से कम ही रहते हैं कंपेयर्ड
तो संडे को क्या कर सकते हैं किसी संडे को पूरा दिन भर कर सकते हैं उसको फी रखी फी फी कैप्चर नहीं कर पाता जल्दी से तो क्योंकि इस ज्ञान को कैप्चर करने के लिए लोगों को स्टडी दूसरा करना पड़ेगा स्टडी का मतलब ये है कि क्योंकि इनका मेन जो ये है तो मटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा इनका फोकस है आज क्वेश्चंस वो था आज हेवी दिया मैंने थोड़ा हेवी था आज लेकिन टॉपिक था आयुर्वेद मैथोलॉजी उसमें पूरा बताया अंग्रेजों का कैसे चाल किया उन्होंने भारत के कैसे धर्म परिवर्तन किया क्या कर सकते हैं बताना चाहिए ना कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा है ना रिजल्ट ये कि अब आप क्या करो ना हम लोग क्या रहे सबको बुला रहे हैं ठीक नहीं है हम ये क्या कर सकते हैं ना वी शुड कॉल ऑन द सीरियस पीपल बाकी जो सीरियस नहीं हुआ थे तो हल्ला करते हैं और बात है ना वी शुड नॉट कॉल सच अब आप क्या करो ना कि आप लिस्ट बना रहे हो लड़कों का जो आ रहे हैं तो जो पिछली बार क्लास जो टाइम पे लेट आ रहे हैं उनको मत रखो प्रसाद के लिए आते हैं और आगे पीछे बैठ के हल्ला करते आप सुन रहे मेरी बात क्योंकि उससे क्या होना मैं डिस्टर्ब हो जाता मैं डिस्टर्ब हो जाए आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ये बंदर की तरह लोग है ना इनको कोई सुधारा नहीं जा सकता है एक सुधारने का एटीट्यूड होता है तो जो लड़के सीरियस है वो भी लॉस हो जाएगा आज मैं चार चौपिक डिस्कस करने के लिए सुधरा लेकिन वो हल्ला कर रहे हैं बीच में बाद में आगे बीच में बैठ रहे हैं शुरू में आते भी नहीं हाँ आते हैं बात करते हैं फिर उनको डांटना बार बार डांटना भी ऐसा नहीं है ना बात
तो फिर कॉल करें एक्चुअली भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि सब बच्चों को तो क्या है कि अपने साथ के दो चार लड़कों को
नहीं
बुलाना
है
उनको कैसे
नहीं अब हम बोल सकते हैं कि अब नहीं बुलाना है तो सीरियस लड़के समझा देंगे बात
थोड़ा सा
इसीलिए उनको जो पर्सनली उनको उनके लिए उन्हीं को कॉल कीजिए अब बोलिए कॉल करिए अब और किसी नए को मत लाना और करके बोलना आप लोग SMS करते हो दूसरे के थ्रू करते हो इसलिए डायरेक्ट बात जो नया व्यक्ति है तो उसको फिर से पकड़ नहीं पाएगा ना जैसे मान लो अभी हमारे 6-5 क्लासेस हो गए अब जो नया व्यक्ति वो तो उन क्लासेस में जानता नहीं वो फिर से ए पूछेगा ए क्या होता है अब पूरा ए से फिर बी सी डी पूरा फिर से बताओ बाकी लोग बताए बाकी लोग कुछ आगे पता ही नहीं है
स्टूडेंट्स मुझे कलेक्ट करते हैं,
कई लड़के मुझे पंद्रह लड़के हैं ऐसे यूनिवर्सिटी में, उन्हें तो
इस बार मैं डायरेक्ट ही बात करूंगा लड़कों से, फोन से ही करते हैं।
जब तक डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा तब तक नहीं होता क्योंकि हम देखो इतने लोगों के लिए प्रसाद बना रहे हैं, इतना एनर्जी इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा क्या ना हम कम लोगों के लिए करें, इतने जीत रहे हैं फोकस्ड अटेंशन दे रहे हैं। अब कम लोग सीरियस रहेंगे तो सीरियस डिस्कस करेंगे। अब ठीक है, अभी तक तो चल रहा था ठीक है, लेकिन अब जो है सीरियस जा रहे हैं ना, जो है वो डाइजेस्ट द्वारा करना, पिछली बार जो फीडबैक मिला उससे निकाल
ठीक है, दोनों फीडबैक पिछला और आज का दोनों साथ है
ठीक है ना,
तो यही ठीक है। मैं लड़कों से कांटेक्ट ना करा सीधे,
अगली बार जो कोर्स करते हैं ना टाइम एंड स्टडी मैनेजमेंट वर्कशॉप करेंगे, चार्ज और बोलते हैं कि ये चार्ज रहेगा और जो सीरियस है जो सीरियस हो जाए ऐसा देखे तो फुटबॉल वाले आएंगे नहीं ना, 100 रुपये आगे तो छूटेंगे और जो सीरियस लोग हैं जो आएंगे उनको वापस कर देंगे पैसे, ताकि जो सीरियस
वो एक तरह से उनको छापना
जाएगा
तभी कल के लिए तो सभी आई लोग जगह कल भी इस तरह से आपकी बातचीत हो चुकी है,
कल से आ रहे थे अब धीरे धीरे छटेगा, आज बहुत हैवी दिया कल वाले कुछ छटे थे कल जो पिछली बार दिया था, मैं छाटना चाहता हूँ उससे बात को ना, अनवांटेड एलिमेंट्स करके करके छाट लूंगा
उनको, ऐसी डोज दे दी जाएगी
तो वो अपने आप छट जाएंगे और जो सीरियस लोग हैं वो कंटिन्यू करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है।
तो कल के लिए तो चलो कॉमन साइड
है, जितना कम होता जा रहा है उतना अच्छा है हमारे लिए, विष्णु के लिए प्रसाद बनाने भी अच्छा प्रसाद बना
सकते
हैं, चपाती राइस पूरा फूल प्रसाद बना सकते हैं, मैथवन तो ठीक है चलो टाइम तो चल रहा है सर, एक दो क्लास के बाद ना हम लोग फूल प्रसाद बना तो पूरा उनको पूरा केयर कर पाएंगे, अटेंशन दे पाएंगे, पर्सनली मिलूंगा मैं जैसे कल बहन बुलाया दो तीन लोगों को पर्सनली बात करूंगा सबसे, आप अभी अनाउंस कर दो कि अगर कोई पर्सनली मिलना चाहते तो बुला के मिल सकता है ना, चाहे तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है किसी का तो बता देंगे। यस किस लड़के चुनते हैं जो सच्चे हैं, है ना? जो जो बाद में बात कर रहे थे लड़के ना, एक अंकित नाम का लड़का है और भी तीन चार
काफी है, उसके लिए चार दिन को तैयार है क्योंकि मैं पूछ रहा टाइम मैनेजमेंट उसे बीच में प्रोग्राम के आगे भी पूछा है कि मुझे उससे रिलेटेड चाहिए टाइम मैनेजमेंट का, ये मेरा एग्जाम दिखा रहा था उससे रिलेटेड कुछ इस तरह।
अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कब एग्जाम आ रहा है?
एग्जाम का वही है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में ही पढ़ा था उनको, अभी तो एग्जाम का दूर है 2 महीने।
ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के लिए थोड़े एग्जाम के समय थोड़े टाइम मैनेजमेंट टाइम है मतलब उदास से थोड़ा ना अप्लाई करते
प्रोसीजर होता है स्टेप
बाय स्टेप। ये लड़के जो है ना
कल इसको ऐसा करते हैं, हम क्लियर कर लेते हैं कि कितने बच्चे कौन कौन से हमें सिलेक्ट करते हैं, कल को डिसाइड करते हैं उसको, कल के बाद
फाइनल लिस्ट बनाते हैं,
फाइनल लिस्ट कल
और उनको बोल देंगे कि और किसी को मत लेके उसको चलने दीजिए, कुछ करना है आपको तो रहने दीजिए ऐसे।
आपको किसी को बात नहीं करनी, किसी को अपना डायरेक्ट आना है, वैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अब दूसरों को बुलाने की बजाय खुद ही आते हैं।
हाँ,
जैसे 2-4 दिन से बात होती है मेरी तो मैं अब अकेले ही आता
हूँ, तो सबको बोल देना जो भी सीरियस लड़के हैं, या कल मैं क्लास में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, कि और अब ऑलरेडी हम लोग इतना क्लास आगे बढ़ चुके हैं, कोई अलाउ ही नहीं करेंगे अपने बात को, हम लोग बंद कर देते हैं अपने बात को, कि जिन्होंने दो या दो से कम क्लास अटेंड किया है उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। क्लियर बात होगी? उसमें क्या होगा कि कुछ स्टैंडर्ड रहे, इनको भी लगेगा कि कुछ स्टैंडर्ड हो रहा है, जब लगेगा सब कुछ फ्री में हो रहा है ना तो फिर ये उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं,
बस अभी तो कुछ के माइंड में आ रहा भी होगा शायद, नहीं भी आ रहा होगा तो कुछ पता ही नहीं है क्या होगा,
इसीलिए मैंने आज बताया इसको थोड़ा कि हम लोग फ्री में दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको इसको लाइफ मत लो। तो इसलिए हम लोग इसको अब कोई आ जाता है कभी भी घुस जाता है क्लास, कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो इसलिए ठीक नहीं है ना ये। तो आगे से आप जो है ना टाइम फिक्स रखो, बोलना है कोई नया व्यक्ति नहीं आएगा क्लास में, ठीक है? उसका रीजन क्या है, रीजन क्या बताएंगे?
क्योंकि इसमें पहले से प्रोग्राम जो है आगे चला गया है, कई क्लासें हो चुकी हैं, हमारी समझ से बाहर आए हैं।
हाँ, तो नया व्यक्ति आएगा तो
बेस तैयार होगा बाद में।
हाँ, तो फिर बुलाएंगे
उसमें आपको।
नो एंट्री न्यू बैच, अब ओल्ड हो गया है बैच, नया व्यक्ति को। तो आप अटेंडेंस लिस्ट आपके पास है ना? रोज बना रहे हैं तो आप उसको क्या करो, अपडेट करो, और जो लोग लगातार आ रहे हैं जो लड़के ना उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं।
लगातार तो कई है क्योंकि, लेकिन वे भी क्या है कि आते तो हैं फीडबैक भी करते हैं, लेकिन वो ये मकसद उनका प्रसादम या फिर वो हल्ला गुल्ला जो करने आते हैं ना, जानते तो हर बार है लेकिन क्या है कि वे सीरियस नहीं है रेगुलर।
तो वैसे लोगों को हम कॉल ही नहीं करेंगे अगली बार से, आप वही बता रहे हो ना कि इसी को नोट करना है हमें, तो फीडबैक नहीं भरा है, फीडबैक से क्या गया उससे सब कुछ बता सकते। अटेंडेंस فیڈ بیکس اچھے ہیں. یہ آج کا ہی ہے. مسلم بھی ہے اس میں. آپ ان سے بات کرتے ہو مسلم سے؟ یہ مسلم ہے. کیونکہ ایسے لوگ سے فائدہ نہیں ہے نا, بعد میں پرابلم کریٹ کر سکتے. ویسے تو سب یس یس لکھا ہے. فیڈ بیک کا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے, کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. انٹیلیجنٹ اس لیول کا نہیں ہے نا تو کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. وہی بول رہا ہوں نا, اس لیے میں بول رہا ہوں پرسنلی بات کروں آپ سب سے, یہ تو پرسنل بات نہیں کریں گے نا, پتا نہیں تو پرسنل بات کرو سے پوچھو کیسا لگا آپ کو, وڈ یو لائک ٹو کنٹینیو ان فیوچر نا, تو اگر آپ کو پسند ہے تبھی آپ آؤ نا, اس طرح سے آپ پوچھو مجھ سے, ایک دو بار بات کرنے سے نا پتا چلے گا کس کا کیا ایٹیچیوڈ ہے نا. کلاس کے بعد بات کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم نہیں کرتے.
مطلب یہ بات کرنے کے لیے پھر ایک الگ چاہیے نا پرزینٹر,
سب ایسے ہی ہیں سب ایسے. دیکھو یہ دس لکھا ہے پریکٹیکلی, تھی دس سر بات کوئی ویو نہیں ہے نا. بعد میں ملتے ہیں نوٹ کرنا چاہیے
تو کل ایسا کرتے ہیں پھر ان سے ان پہ اسپیشل نظر رکھیں کیونکہ نام سے تو سبھی کے نام ہونے والے ہیں
نام سے نہیں پتا چلے
تو کل میں یہاں کلاس کے اندر ہی رہوں اور ان کی فیڈ بیک فارم اور اس کی الگ سے پہچان ایک ویسے بھی ہو جائے گی انہیں کو فوکس کریں گے باقی وہ تو جیسے آ جائے ایسے ہی کر رہے ہیں
ہم فون ان کو کریں گے کیونکہ ہمارا انرجی جا رہا ہے انرجی ویسٹ نہ ہونا چاہیے
ٹھیک ہے جی کل تو جو بچے آگے بیٹھ رہے ہیں جو سیریس ہیں کل ان کا فیڈ بیک فارم اور یہ سب سیپریٹ رکھیں گے ان کے نام یہ سب کچھ کر ابھی تھوڑا مکس اپ ہو گیا نا ان سب ہو گئی
اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا انڈیویجلی بات کرو کل منتر میڈیٹیشن کراؤں گا میں ہر کسی چینٹنگ کراؤں گا تو سیریس لڑکا نہیں ہے سیریس کیرتن سے یہ نہیں مین چیز ہے کہ اس میں سے ہمیں سیریس لوگوں کو سلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں سب سے خراب لوگ کا مین پرابلم یہی ہے میرا کہنا ہے کہ میں جب کلاس دے رہا ہوں نا تو میں تو نہیں کروں گا نا یہ کام ڈاؤن لوڈ کرنا آپ کو بیٹھنا پڑے گا آپ کو اندر بیٹھنا پڑے گا نوٹ کر لیجیے دیکھیے آبزرو کیجیے کا کیا ہے نا آپ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں پیچھے بیٹھ کے
دیکھیے
کون آنسر دے رہا ہے اٹھ کے کھڑا ہو کے بول رہا ہے
ان کا نام بھی تو فیس یاد رہے گا تو میں ان کو بعد میں پکڑ سکتا ہوں
کلاس کے بعد نا پندرہ منٹ سب سے پرشاد کھڑا ہو تو مت دیجیے بیٹھا دیجیے انٹریکشن دیجیے जैसे मंदिर में करते हैं हमारे, इससे पता चलेगा कौन क्या है। तो अगर मैं ज्यादा लड़कों को पकड़ना नहीं है, ठीक है, मेन चीज है कि सीरियस लोगों को पकड़ना। कल के क्लास में ये जो लड़की आए थे उनको अगर हम फोन करते हैं तो फोन से बात करते हैं,
क्या जाएंगे?
नहीं नहीं, आप मुझे पूछ सकते हो कैसा लगा आपको, क्या अच्छा लगा आपको, सर बात करो तुझे
कैसे अच्छा लगा,
हाँ क्या अच्छा लगा है ना, ये बताओ क्यों अच्छा लगा है, थोड़ा डिटेल पूछिए।
चलो अब तक तो जैसा हुआ क्या था, कल से हम इसमें वो सीरियस कदम उठाते, एक तो कल क्लास में मैं बैठूंगा और कौन लड़का क्या है जो लड़के सीरियस है उनका नाम फीडबैक अलग से रहेगा, उनसे इंस्ट्रक्शन कल भी होगा और बाद में जैसा जो प्रोग्राम नहीं होता है तीन चार पाँच छः दिन बीच के अपना, तो उन दौरान भी मैं अलग से होता है
मैं बता सकता हूँ आपका, फिर बात करो तो मैं नाम पूछूंगा पीछे चार सर बात करो सीरियस क्लास में देता हूँ मैं नाम जिसका बोलूँगा हाथ उठाओ को बोला थोड़ा अच्छा लगेगा उसे बात करो सबका नाम बोलूँ बुलवाऊंगा
ठीक है। थोड़ी सी एक मिस्टेक रही है तक कि अंदर बैठना नहीं हो रहा था, तो कल से जो बाहर की एक्टिविटीज हैं बाहर के अंदर आ जाऊंगा, तो कल और फिर उनसे तो कभी भी अलग से बात करके या इस तरह से हम कर सकते हैं इंडिविजुअली उनको कॉल करके उनको
बस दूसरी ऐसे उनको तो बोला क्या होगा मैं फास्ट नहीं आगे बढ़
पाऊंगा,
कोई भी होगा फिर नहीं आएगा उसको,
नहीं आएगा ना फिर पीछे खींचेगा,
फिर पीछे ही नहीं खींचेगा उसको समझ नहीं आएगा ना,
नहीं आएगा डिस्टर्बेंस,
उसको भी समझ नहीं आएगा पीछे के तीन चार टॉपिक जो नहीं किया है उसको पता नहीं है ना, बीच से आ रहा है तो वो क्या समझेगा। और रेगुलर कौन लड़के आ रहे हैं वो भी चुन सकते हैं, जो लड़के रेगुलर आ रहे हैं सबका सबके किसका किसका है ये आपका अपना अपना लेके आ गए क्या?
अरे सर कोई दिक्कत
नहीं, तुम्हारा तो अपना होगा ना वाले
जी,
तो कुछ गर्मी से इतनी ठंडी
है सर रजाई नहीं लिया, रजाई खुल गया था कुछ देर ले नहीं आए, कंबल ले आए, कंबल में काम चल जाएगा
अगर चले तो
बताइए,
बहुत है आप लोग इतना लेके आ गए बहुत बहुत धन्यवाद आप,
अरे सर धन्यवाद नहीं सर, बहुत छोटे हैं हम, आप हमारे गुरु हैं सर,
इतना मेहनत की आप लोगों ने हमारे लिए बताइए
सर,
कल अविनाश तुम आ सकते हो तो आ जाना, आप इंडिविजुअली मिल सकते
हैं, क्लास में हम बता नहीं पाते हैं ना आपको
जनरल
प्रॉब्लम,
आप लोग का जो पर्सनल प्रॉब्लम है ना वो पर्सनली भी लेना चाहिए सर,
पूजा
क्या है पूजा में
हम भी सर ज्ञान ले चुके हैं ना सर, तो वही है कि मतलब थोड़ा
पूजा कॉलेज ज्ञान होना کوشش کرنا چاہیے.
روز
کیجیے پوجا, لیکن کل تھوڑا پوجا کو سائڈ
کر لیں,
شام میں کر لیجیے.
سر اپنا نمبر دے دیجیے,
فون ٹھیک ہے,
لیکن
فون پہ پرابلم
فون
لے سکتے ہیں آپ.
سر یہ ہے کہ مطلب اگر دیکھیں گے کلاس وغیرہ نہیں چلا ہم لوگ کا, یہی ہے کہ مطلب پہلے آ گئے تو پھر آگے مل لیں گے. سر وہی ہے کہ بینک کا تھوڑا دقت ہو جائے گا.
کتنے بجے بہن آتی ہے؟
وہی 10 بجے تک آ جاتی ہے, 10:30 بجے تک آ
جاتی
ہے. دو شفٹ لگتی ہے,
تو
سیکنڈ ٹرپ میں جائیں گے سر, سب تو آئے گی
نہیں. آپ مجھے بتاؤ
جی
کتنے بجے آپ سو کے اٹھتے ہیں؟
ہم سر سو کے اٹھتے ہیں لیٹ میں سر, ویسے مارننگ توڑ ہی آتے ہیں, 4 بجے توڑ ہی آ رہے ہیں آج کل, لیکن یہی ہے کہ مطلب 5-5:30 بجے تک پھر سو جاتے ہیں, پھر وہی اٹھتے ہیں 8 بجے تک.
4 بجے کیوں سوتے ہیں؟
4 بجے اٹھ جاتے ہیں اس لیے کہ سر 4 بجے سوتے ہیں کہ مطلب صبح اٹھنا بڑھیا رہتا ہے.
صبح اٹھ کے سو جانا پھر بڑھیا نہیں ہوتا ہے نا
جی,
کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے سارا لاسٹ ہو جائے گا جو بھی آپ نے گیم کیا. سو اٹھ کے سو جانے سے پھر سماپت ہو جائے گا جتنا بھی فائدہ ہوا ہے. یہ تو وہی بات ہوا کہ تالاب میں جا کے نہائے, اس کے بعد ایک لوگ باہر آ کے پھر سے کیچڑ ڈال دیا, اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا.
سر یہ
کرو,
ہم کو دوپہر میں بھی نیند آتی ہے,
اس کا طریقہ ہے. جب زیادہ سونے سے نہیں نیند جاتا ہے, ضروری نہیں کہ آپ زیادہ سو گے تو آپ کو نیند نہیں
آئے, تھکان ٹائپ کی آنے لگتی ہے. تو
زیادہ سونے سے تھکان آتی ہے, لیزینس اور بڑھ جاتا ہے. ایک آپٹیمم ٹائم ہوتا ہے سونے کا, اس سے کم بھی سو گے تو آپ کو تھکان لگے گا اور زیادہ بھی سو گے تھکان لگے گا نا. تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہے, کوئی کہ آپ زیادہ سو گے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی دن میں, ایسا نہیں ہے. تو اس کے لیے صبح ہمیں جو ہے اپنے صبح آپ 4 بجے اٹھتے ہو, اس کو 4 بجے نہ اٹھ کے آپ کیا کرو کہ کتنے بجے سوتے ہیں آپ رات میں؟
سر شام کو آج کل تو ہم جلدی سو جا رہے ہیں, 9 بجے تک ہم سو جا رہے ہیں. 9 بجے ایک دم ڈیپلی نہیں نیند آتی ہے, لیکن 9 بجے تک ہم کتاب وتاب بند کر کے سو جا رہے ہیں, اس لیے کہ جلدی سو جائیں. لیکن ہم کو یہ پرابلم ہوتی ہے نا سر, مطلب جلدی نیند نہیں آتی,
اس لیے نہیں آتی ہے کیونکہ دن میں جو ہے نا لوگ سو جاتے ہو, صبح سو گے تو رات میں.
دن میں نہ بھی سوئے نا سر, پورا دن اگر جگے رہے.
صبح جو آپ سوتے ہو نا, صبح جو 5-8 سوتے ہو نا, اس کے کارن جو ہے رات میں نیند نہیں آتی. تو اس لیے آپ دن میں سو ہی مت, 6 بجے کے بعد کبھی مت سوئے دن میں, ہے نا. اگر سونا ہے تو 45 منٹ آفٹر نون میں کھانے کے بعد سوئیے, ٹھیک ہے؟ زیادہ نہیں, 45 منٹ, 1 گھنٹہ سے زیادہ مت سونا. اور اس کے بعد جو ہے پھر رات میں آپ کو 10 بجے سوئیے, 9 سے 10 کے بیچ میں. اور صبح جلدی اٹھیں گے نا, صبح جلدی کا مطلب ہے کہ آپ 6 بجے کے لگ اٹھو, ہے نا. ابھی ترنت 4 بجے مت اٹھیے.
سر ہم تو قریب جب آپ کا مطلب اسٹارٹنگ ہوا تھا, اس سے پہلے گرو جی جب آئے تھے, تو مطلب جب سے وہ بتائے تبھی سے میرا اسٹارٹنگ.
نہیں نہیں, تو ایسے نہیں ہوگا,
ابھی 15-20 دن ہو گئے,
ٹھیک نہیں ہے نا. وہی بتا رہا ہوں نا کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اب کوئی کچھ بتا دے, یہی سمسیا ہے کہ سو پھر اٹھ کے کرنے کے بعد پھر سونے سے کوئی
نہیں سوئیں گے,
ہے نا.
نیند بھی آئے گی تو بھی نہیں سوئیں گے.
تو اس سے اچھا کیا ہے کہ آپ کیا کرو نا کہ پہلے جو ہے اچھا سے ایک اسٹریچ میں سو جائیے. 6 گھنٹے کا جو نیند ہوتا ہے نا وہ آپٹیمم ہوتا ہے, 6 سے 7 گھنٹے کے بیچ کا جو نیند ہوتا ہے وہ آپٹیمم ہوتا ہے. 7 گھنٹے سونے کے بعد اگر آپ کو نیند لگ رہا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں, اس کا مطلب آپ تھکے ہوئے نہیں ہوئے, من کی سمسیا ہے. آپ اٹھ جاؤ اور اٹھ کے نہائیے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ سوئیے مت, نہائیں گے آپ فریش لگے گا. میں لگتا ہے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں نا, رات میں آپ سونے جاتے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی جلدی, है ना। अब पांच घंटे सोने के बाद लगता है, जब सुबह उठते तो लगता है अरे बहुत थक गया। रात में सोने से पहले नींद ही नहीं आ रही, जैसे कि कहां से एनर्जी है पूरा। पांच घंटे सोने के बाद एनर्जी गायब हो जाती है, थकावट हो जाती है। सोने के बाद तो आराम मिलना चाहिए ना, थकावट कैसे लगती है? मतलब की थकावट नहीं है, वो क्या है, लेजनेस है मन मन की समझ से। तो उसको थकावट ना मान के तुरंत निकल के बाहर बेड में तुरंत एक सेकेंड भी सोचिए। जैसे आप जैसे उठते हो सुबह ना, तो जैसे ही आंख खुलती है फटाक से बेड से बाहर आ जाओ, खड़े हो जाओ फटाक से, फिर आप देखना पूरा दिन आपका अच्छा जाए। वो जो दो मिनट जो होता है ना उठने के बाद, उस पर बहुत पूरे दिन का चेतना निर्भर करता है। फटाक से बाहर आइए, है ना, ठंडे से मत डरिए, जाइए नहाइए, नहा हुआ के आएंगे आपको फ्रेश लगेगा ना। और उसके बाद जो है अगर आप चाहें तो 6 बजे तक सोइए, शुरू में अभी 6 बजे तक सोइए।
अभी तो सर स्टार्ट कर दिए, हम तो बंद नहीं करेंगे, 4 बजे उठते हैं तो उठेंगे, रेगुलर उठेंगे, रोज उठेंगे सर, ये एकदम नियम है सर। इसको तो बहुत पहले हमको स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन जब स्टार्ट हो गया 4 बजे।
4 बजे क्या करते हैं?
4 बजे उठ के सर पढ़ाई करते हैं, 1 घंटा तो पढ़ते ही है। उसके बाद फिर ये है कि 5 बजे के बाद ही मतलब ये सोने का है, अब तो बंद कर देंगे इसको भी।
नहीं, लेकिन वो मेरे हिसाब से आइडियल नहीं है, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ आपको।
नुकसान करता है,
उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ के सो जाओगे ना तो फायदा नहीं है।
नहीं सोएंगे सर,
अगर उस दिन में सोएंगे नहीं ना, तो फिर अगर पूरा नींद पूरा नहीं हुआ है ना आपका, क्योंकि बॉडी का अपना एक साइकिल बना हुआ है ना पहले से। हमारी बॉडी जो है बचपन से हम जिस तरह से रहते आए पिछले 10 साल से, तो उससे ढल गया उस टाइम, और सडनली आप उसको तोड़ोगे ना तो रिवोल्ट करेगा, विद्रोह करता है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए आपको अल्सर की बीमारी हो जाएगी या पेट में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए धीरे धीरे उसको ट्रैक पे। एक बॉडी का अपना स्लिप साइकिल होता है जो बॉडी बना लेता है, एक ओरिजिनल स्लिप साइकिल है, और एक जो है स्लिप साइकिल जो है वो जो कि ढल के बना है। तो अब फिर से सही ट्रैक पे ले जाने के लिए आपको एक तुरंत एक दिन में नहीं कर सकते आप, कई सिस्टम प्रॉब्लम होगा ना, तो इसलिए धीरे धीरे बड़ा ही चलाकी से करना है ट्रैक। जैसे ट्रेन है, ट्रेन इधर जा रही है, सडनली मान लीजिए इधर शिफ्ट करना है, तो सडनली ऐसे ट्रैक नहीं होता है, ऐसे धीरे 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 ट्रैक, ठीक है ना, क्यों सडन करोगे तो उलट जाएगी ट्रेन। इस तरह से हमारा शरीर है, अब पता चलेगा कि 4:30 बजे उठना चाहिए, लेकिन सडनली उठेंगे ना प्रॉब्लम हो जाएगा, और ज्यादा दिन तक नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए अच्छा है कि धीरे धीरे करें और लॉन्ग टर्म तक करें। तो हमारे हम क्या सजेस्ट करते हैं टेक्निक, कि आप जो है अगर आप 6:30 बजे तक उठते हैं तो पहले 15 मिनट कम कीजिए, ठीक है, 6:15 बजे उठिए 5 दिन 1 सप्ताह तक, फिर 15 मिनट कम कीजिए 6 बजे आइए, है ना, फिर 1 सप्ताह, फिर 15 मिनट 6:15। इस तरह से बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं, सुन रहे
हैं,
और आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर आप जो है वो 5 बजे तक के लेवल पे आ गए, उठने पे रही अभी 4 बजे धीरे धीरे। इस तरह से
ये रात में जो सोने का सर,
रात में सही सही है,
देर से नींद आती है तो भी मतलब अभी मतलब जल्दी अगर सो जा रहे हैं, नींद जा रहे हैं, ठीक है सर, इसको भी रूटीन अभी वही चल रहे हैं।
नहीं, अगर अगर आप रात में जो है ना आप उसमें ज्यादा फोकस, अगर आप दिन में सोएंगे नहीं तो आपको रात में अपने आप नींद आएगा, ठीक है ना, आप दिन में सोइए मत, तो आप देखेंगे रात में अपने आप आपको थकावट की नींद आएगी। आप जैसे ही बेड पे जाएंगे आप फटाक से सो जाएंगे, लेकिन एक स्ट्रेच में सोइए सुबह 10 से 6, अगर सोए 6 बजे तक सोइए, सुबह उठ जाइए, फिर धीरे धीरे 5-10 मिनट 15-15 मिनट घटाइए। हाँ, ये नहीं कि एक दिन 15-6 उठा, अगले दिन भी 6:30 उठा, नहीं 6:30 मतलब 6:30 उठना है लगातार, तो इसको रेगुलेट करना अपने आप को। तो धीरे धीरे काम कीजिए, आप देखो नेचुरल होगा और उससे आपको ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा हेल्थ पे, और अच्छा भी लगेगा, है। और नहीं तो अगर आपको यहाँ से आप रहते हैं जहाँ पे कितना दूर है, वहाँ से आप लोग कैसे, ये कहाँ से लेके?
ये तो सर हॉस्टल में रहते हैं, मतलब हम सोचे कि घर हम लोग का, हमारा घर तो यूपी में
है। नहीं, हॉस्टल में कहाँ? हॉस्टल बगल में ही है ना, तो आप लोग सुबह नहीं तो आप यहाँ पे आ जाओ,
हम कल आते हैं सर
6 बजे के लगभग आ जाइए,
आपके पास आते
हैं ना, सुबह आप लोग 6 बजे आ जाओ, बैठ के मंत्र मेडिटेशन करेंगे, साथ में चैंटिंग करेंगे है ना, और फिर अपना मंगल आरती करके और फिर चले जाइए।
फिर जाएंगे नहीं सर, आपसे थोड़ा मतलब
डिस्कस कर लेंगे है ना। तो ये टेक्निक जो है ना, इसको कृष्णा बताते हैं युक्ताहार विहारस्य, आहार और विहार, आहार और निद्रा, इसको हमें बैलेंस करना है। जब इसको बैलेंस नहीं बोलते हैं, जो योगी जो कम भी कम सोता है, बहुत कम सोता है, जो बहुत ज्यादा सोता है, दोनों जो है वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। जो कम खाता है और बहुत ज्यादा खाता है, दोनों लोग ठीक नहीं है योग के लिए। योग के लिए बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं।
योग में सर ये भी बताया जाता है कि आहार जिस तरह का होगा उसी तरह का मन होगा,
मन होगा।
तो सर आहार तो हमारे सात्विक है, ब्राह्मण है हमारे सात्विक है,
नहीं
आप समझ ही रहे हैं कि हम
सात्विक आहार का मतलब ये नहीं कि वेजिटेरियन खा रहे हैं तो सात्विक हो गया
जी।
सात्विक आहार मतलब कि जो सत्वगुण में बनाया गया हो, जो कुकिंग कर रहा है उसकी चेतना पे भी बहुत डिपेंड करता है आहार। जो व्यक्ति बना रहा है वो किस भावना से बना रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
अच्छा सर, हम मतलब खाना तो सात्विक, मान लिया हम सात्विक खाते हैं सर, तो हमारे मन क्यों ऐसे होते हैं कि जो अपवित्र रहते हैं, जो मतलब गंदगी की ओर जाते हैं?
आप साथ नहीं, गंदगी की इसलिए कि पहले से संस्कार स्ट्रांग है, तो अब दवाई जब आप लेना शुरू करते हो, कोई रोग हुआ है तो अच्छा डाइट लेना शुरू करते हैं तो तुरंत थोड़ा ना ठीक हो जाता है, वो पहले से ज्यादा खराब हो चुका है तो धीरे धीरे। लेकिन डाइट चूंकि ठीक कर दिया है तो इसलिए कम से कम अब उल्टा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कम से कम बढ़ेगा नहीं रोग, ठीक है, कम से कम बढ़ेगा नहीं, कम से कम आप उसी लेवल पे रहेगा और धीरे धीरे आप कम होना शुरू होगा। तो उसी तरह से अगर आप जैसे अब इन चीजों को अपना रहे हो तो अब क्या होगा, कम से कम बढ़ेगा नहीं, बढ़ना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, समझ बात को? तो कम से कम नहीं, बढ़ना बंद हो जाए, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है। उसके बाद धीरे धीरे आप देखना कि कम होगा।
और रात में सर जो हम सोते हैं तो उससे पहले मंत्रों का जो उच्चारण करके सोते हैं, भगवान के जो भी हमारे मंत्र हैं उनका उच्चारण करके सोते हैं, तो उनसे बढ़िया क्या ये है कि हम कृष्ण का या राम का सिर्फ नाम लेके सोएं, वो बेटर है कि?
उसके लिए मंत्र है, उसके लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसे आप उसके उससे पहले आप जो है वो प्रभुपाद का स्मरण कर सकते हो, है ना, उसके लिए भगवान से को धन्यवाद देना चाहिए, है ना, कि भगवान आज का दिन आपने दिया मुझे, मैं पाप के जीवन से मुक्त रहा आपकी कृपा से, अब रात्रि में सोने जा रहा, मुझे पता नहीं रात में क्या सोचूंगा मैं, निद्रा हूँ, मेरी सुरक्षा कीजिए, तो इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद प्रणाम करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोल के फिर सो जाओ।
तो मंत्र सर अभी
हरे कृष्ण सिंपल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप सोने से पहले एक माला करो तो अच्छा रहेगा,
एक माला
7-8 मिनट लगता है बस
जी। माला तो हमारे पास है सर, उससे हम मतलब जो गुरु जी का वो है तो उनसे हम हमारे आसाराम जी,
अच्छा बापू जी,
तो उनसे हम शाश्वत मंत्र लिए हैं सर, तो उन्हीं का भी हम वो करते हैं।
अच्छा।
तो उसी माला से हम कर सकते हैं?
कर सकते हैं।
माला दूसरा लेना
होगा, नीम की माला से वैसे करते हैं,
नीम की माला से
शुरू में नीम की माला शुरू होती थी, फिर तुलसी माला लेते है ना। आपके लिए माला लेके आऊंगा मैं अगले, ठीक है, अभी आप उसी से कीजिए।
अभी सर हाथ से ही कर सकते,
हाथ से भी कर सकते,
यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं ना।
हाँ,
यहाँ से ये,
यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नौ बार करेंगे तो 108 हो गए।
यहाँ से सर 1, 2
यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो काउंटिंग केवल कर रहे हैं ना, आप तो दूसरा प्रोसेस बता रहे हैं, केवल काउंटिंग है, सीधे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ठीक है ना, सिंपल,
मतलब 10 बार कर लेंगे,
9 बार
कर 108,
और उसके बाद जो है जैसे माला लेके आऊंगा तो माला से दीजिएगा।
सर हम तुलसी का माला पहन भी रहे थे लेकिन फिर निकाल दिया।
नहीं अच्छा किया, अभी मत पहनना,
अभी ना पहने ना,
बताऊंगा मैं कब पहनना है ठीक है, जब आपका जो है और थोड़ा कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगा चैंटिंग करने से तो फिर आप प्रसाद खाते हैं। उसके बाद माला पहनने के बाद आप कोई भोजन बाहर नहीं खा सकते कभी भी, यहाँ से नीचे
खत्म करना है, ये बाहर का खाना हाँ छोड़ना चाहिए,
इसलिए हम लोग यहाँ व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे हमारा बेस जहाँ भी होता है ना वहाँ पे हमारा कुक वहाँ पे करते हैं, तो कुक जो बनाता है एकदम शुद्ध सात्विक भोजन, भगवान को पहले भोग लगाते हैं
फिर हॉस्टल का तो व्यवस्था करना है। थोड़ा ये है सर कि लाइट को ये सिस्टम